भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का 13वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहमिति दुर्दया विलज्जमानाया यस्य स्थातुम् इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममामिति दुर्दया विलज्जमानाया यस्य स्थातुम् इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममायमिति दुर्दया विलज्जमानायस्य स्थातुम् इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहमिति दुर्दया विलज्जमानायस्य तुम इक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममामिति दुर्दया विलज्जमानया यस्य विलज्जमानयायस्य स्थातुम् इक्षापते मुया
विमोहिता विकथन्ते
विमोहिता विकथन्ते ममायम इति दुर्दया विलज्जमानयायस्य धातुम् इक्षापते मुया विमोहिता विकथन्ते ममामिति दुर्दया माताजी विलज्जमानयायस्य स्थातुम् इक्षापते मुया विमोहिता विकथन्ते ममामिति दुर्दया विलज्जमानयायस्य स्थातुम् इक्षापते मुया विमोहिता विकथन्ते हरे कृष्णा। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब लोग साथ में। भगवान की भ्रामिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे ये मैं हूं और ये मेरा है के विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तात्पर्य बहस दिवाएंगे अंग्रेज श्रील प्रभुपाद की। भगवान की दुरज्य शक्तिशाली छलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। ये व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ईश विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है, और ऐसा व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं या उन लोगों को जो पहले से ठगनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं, जो उनके शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। अतएव वह इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ना अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्या मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाते स्वप्नकान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक, क्योंकि पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है, तो इसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्य भागवत सेवाया, भागवत की सेवा कैसे होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए। और नित्यम भागवत सेवा का अर्थ है या तो अध्ययन करना या श्रवण करना या फिर इसके संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने नियम दिया कि सभी भक्त श्रीमद् भागवत कक्षा में बैठ करके क्या करेंगे, भागवत का श्रवण करेंगे और उच्चारण करेंगे। तो कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया, सारे के सारे अभद्रों को दूर करने की शक्ति है किसमें, नित्यम भागवत सेवाया, है ना। तो ये जो भागवत की सेवा है ये कोई ऐसी साधारण सेवा नहीं, हम सोचे कि जैसे गीता क्लास है या फिर हम कहें या नॉर्मल एक सेमिनार है। भागवत सेवा जो है इसके ऊपर बड़ा विशेष बल दिया गया है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो हमको जीवन जीने की शैली सिखाती है, परंतु भागवत रसिक भक्तों के लिए ग्रंथ दिया गया है ना, जो भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगे हैं और अभी उनकी और उनके भक्तों के आपस के संबंध ज्ञान अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन को समझने के रास्ते पे लगे हैं, उन लोगों के लिए रसिक ग्रंथ अमलम पुराण श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में अंतिम अध्यायों में वर्णन किया गया। ये कैसा पुराण है, अमलम पुराण। मल मतलब क्या होता है, गंदगी, और अमल मतलब जो गंदगी से रहित है, जो कभी गंदा हो ही नहीं सकता है, तो ये है अमलम पुराणम। तो इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत है बहुत ही मुख्य ग्रंथ है समझने के लिए, और हमारे विशेष ऐसे जो ये श्लोक हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये मैं हूं ये मेरा है, इससे बाहर निकालने के लिए इससे बड़ी कोई औषधि है ही नहीं संसार में, श्रीमद् भागवत से उत्तम है ना। तो ये जो श्रीमद् भागवत है इसके लिए एक बड़ा ही मुख्य बात बताई जाती है। कहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को त्याग करके द्वापर युग के अंत में जा रहे थे, तो उनसे विदुर आदि जितने मैत्रेय मुनि और उद्धव ये सभी भक्तों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जब आप कृष्ण यहां से चले जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं, किस लिए आता हूं, धर्म स्थापना हेतु, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, है ना। लेकिन भगवान आप चले जाएंगे तो धर्म भी चला जाएगा, और कलयुग में आप रहने वाले नहीं है तो धर्म नहीं रहेगा, और धर्म नहीं रहेगा तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी। तो इस मतलब कलयुग में तो सिर्फ अधर्म का ही प्रकोप होगा। तो वहां पर वर्णन किया जाता है कि कृष्ण के जाने के बाद भगवान कहते हैं कि जब मैं पलायन करूंगा और मैं चला जाऊंगा तो किस रूप में धर्म रहेगा, ज्ञान रहेगा, वो है पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, इस रूप में धर्म रहेगा। अगर कोई भागवत पढ़ता है, कृष्ण को भगवान मानता है, तो वो धार्मिक व्यक्ति कहलाया जा सकता है, वरना वो असुर है। चाहे वो कोई भी नित्य क्रियम किया करता हो, देवी देवताओं की पूजा करता हो, तो वो भक्त नहीं कहला सकता। जैसा वर्णन है इस श्लोक में, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा कलो नष्ट दृशमे एषा पुराणो अर्को अधुनोदितः। कृष्णे स्वधाम उपगते, कृष्ण के स्वधाम चले जाने के बाद में धर्म ज्ञान आदि भी सह, आदि भी मतलब होता है मिश्रण, धर्म और ज्ञान का मिश्रण। क्योंकि अगर धर्म मतलब कि नियमों का पालन करना, अगर धर्म हो लेकिन उसमें ज्ञान ना हो, धर्म तो हो लेकिन ज्ञान ना हो, तो वो क्या भावुकता कहलाती है। लेकिन ज्ञान हो और उसके अंदर फेथ ना हो, विश्वास ना हो, धर्म ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, मेंटल स्पेकुलेशन, मनोधारणा कहलाएगी। ज्ञान तो है लेकिन उसको नियम नहीं पता, उसको विश्वास नहीं, उसको धार्मिक रूल रेगुलेशन नहीं मालूम। तो अगर किसी को विश्वास नहीं है लेकिन उसे ज्ञान है, तो उस ज्ञान का क्या फायदा, वो खाली मनोधारणा से भगवान को जानने का प्रयास करेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको विश्वास तो बहुत है, धार्मिक बहुत है, सुबह सुबह मंदिर आता है और मंगला आरती भी अटेंड करता है, लेकिन वो कभी भागवत खोलकर नहीं पढ़ा, तो वो कैसा है, वो भावुक भक्त है। जिस दिन कोई व्यक्ति उसको बोलेगा ना, अरे अरे कहां लग गए तुम, कृष्ण भगवान थोड़ी है, ये तो विष्णु से अवतार लेके आते हैं, तो बस वो भ्रमित हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा अपनी वजह से। कोई कहेगा अरे तुम्हें आज तक क्या प्राप्त हुआ है, चलो साईं बाबा के मंदिर में, वहां पर मंगलवार को खिचड़ी खिलाने से बहुत कृपा मिलती है, देखो हमारे पास तो गाड़ी आ गई, हमारे पास तो ये आ गया, हमारे पास वो आ गया, वो भ्रमित हो जाएगा क्योंकि उसके पास भागवत का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए विशेषकर भक्तों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि भागवत कक्षाओं को सुने। कहते हैं कैसे सुने, कैसे समझे, तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भागवत परा गया भागवत स्थाने, भागवत परा गया भागवत स्थाने, उसी से सुनना चाहिए जो इस भागवत को जीवन में जीता हो, है ना, जो इस भागवत की परंपरा में जुड़ा हो। वरना ऐसी किसी और से भागवत नहीं सुनना चाहिए कि आस्था चैनल चला करके हम भागवत सुन ले, वो भागवत हमको क्या करेगा, भ्रमित कर देगा, है ना, भावुकता को बदल नहीं पाएगा ज्ञान में। क्योंकि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैष्णवों की कृपा से प्राप्त होता है। और वैष्णव कब कृपा करेंगे, जब आप उनका, उनके साथ में आपका संबंध होगा, है ना, जब आप उनकी सेवा करेंगे, तो हो सकता है उस वैष्णव के द्वारा उसकी कृपा से हमें ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। तो इसलिए भागवत परा गया भागवत स्थाने, भागवत के स्थान में जाकर के भागवत भक्त से ही भागवत सुनना चाहिए। हम कैसे सुनते, टीवी चलाकर सुन लिया, मोबाइल में वीडियो आया वो सुन लिया, ये भागवत ज्ञान नहीं है। और अगर ये ज्ञान आप सही प्रमाणिक रूप से नहीं लेंगे, तो क्या है, खाली धर्म को आप विश्वास रूप में मान रहे हैं, लेकिन वो विश्वास कभी भी टूट सकता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की नींव नहीं है, बेस नहीं है। और ज्ञानी है लेकिन वो मंदिर नहीं आता, मंगला आरती नहीं आता, जप नहीं करता, कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो वो तो मेंटल स्पेकुलेटर है, मनोधारणा में घूमता रहेगा, भक्त थोड़ी है वो। तो इसलिए दोनों का होना, धर्म ज्ञान आदि भी सहा, भगवान कह रहे दोनों चीजें आनी चाहिए। तो कलो नष्ट दृश्यमेश, कलयुग में कौन इस ज्ञान को प्रदान करेगा, पुराणो अर्को अधुनोदितः, एक पुराण है जो कि अर्को, अर्को मतलब कि सूर्य के समान, अंधकार हो और उसमें सूर्य निकल जाए, तो कोई कह सकता है अभी अंधकार बाकी है, जैसे अभी सूर्य निकल आया, सुबह मंगला आरती में नहीं था सूर्य, आप लोग भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे, तो क्या कह सकते हैं उस समय में कि सूर्य नहीं है, है ना, और सूर्य नहीं है तो अंधकार है। लेकिन जब वो सूर्य आ गया, तो अभी कोई बोल सकता है अंधकार बाकी है अभी, है ना। इसीलिए ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता इसीलिए है कि गुरु के द्वारा क्या हो सकता है, ये पुराण अर्को अधुनोदितः, ये पुराण जो है भागवत पुराण, ये गुरु के माध्यम से प्रकट होगा। तो हम भाग्यशाली हैं, कल ही हमारे गुरु महाराज कथा कर रहे थे और आज हमें परंपरागत कथा करने का मौका मिला। मैं सोच रहा था प्रमाणिक है ना, कल गुरु महाराज की, आज हम कर, तो प्रमाणिक है। तो इस तरह से गुरु के वचनों के द्वारा ही हम इसको आगे प्रकट कर सकते हैं भक्तों के माध्यम से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, भागवत परज्ञा भागवत स्थाने, भागवत भक्तों से इसका श्रवण करें, ध्यान पूर्वक इसका अध्ययन करें। और अगर हम दूर रहते हैं, रोज मंदिर नहीं आ सकते, तो कम से कम इसका रोज अध्ययन करना चाहिए। और लोग लाइफ मेंबर बन जाते हैं और उसमें इतना सारा भागवत पुस्तक मिलता है ना, भगवत गीता मिलती है। तो एक व्यक्ति के घर गए थे उनके जन्मदिन के ऊपर, उन्होंने कहा कि आपका जन्मदिन मुबारक हो, है ना, आपके पास में गीता पढ़ी है? कह रहे हाँ घर में पढ़ी है। आपने गीता पढ़ी है? कह रहे हाँ पढ़ी है। कैसे पढ़ी है? कह रहे यथारूप, जैसे दिए थे वैसे ही रखिए, यथारूप, पॉलिथिन भी नहीं निकाला है। और कैसे? बोले हाँ रखा है घर में, अगरबत्ती घुमा देते हैं। भागवत को जब तक पढ़ेंगे नहीं, ज्ञान आदि भी सह ज्ञान प्रगति नहीं होगा। और धार्मिक व्यक्ति वो कहला ही नहीं सकता जिसके पास धार्मिक ज्ञान श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं है। तो इस बहुत मुख्य है कि हम इसको पढ़ें। और इसलिए आज का जो श्लोक है ये भागवत के द्वारा, भागवत परंपरा में हमें इसे समझना चाहिए। विलज्जमानया यस्या स्थातुम इच्छा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्दया। मम अहम ममेति, ये कुछ है मेरा है। आपका कुछ भी चीज यहां गिर जाए या किसी का बच्चा घूम रहा हो और पूछे किसका है, तो क्या बोलेंगे? मेरा है। अभी बोल सकते हैं कि भगवान का बच्चा है? बोल सकते हैं? इसे हमारे को संबंध ज्ञान ही नहीं है कि भगवान का है। इसीलिए लोग अपना वंश बढ़ाने में लगे रहते हैं, है ना, कितना वंश बढ़ाने में लगे हैं, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच बच्चा। और कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनना चाहे, IVF में चला जाए, तो माँ बाप चिंतित, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, चिंतित, हमारा वंश का क्या होगा? अरे तुम तो ब्रह्मचारी बन गए, हमारे वंश का क्या होगा? वो कहता है सही मायने में देखा जाए तो हम सब कौन है, कृष्ण के अंश है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं हम कृष्ण के अंश हैं? अगर कृष्ण के अंश हैं तो इसका मतलब हम कौन से वंश के हैं? कृष्ण वंश के हैं। तो अगर हम कृष्ण वंश के हैं तो हमें किसका वंश बढ़ाना चाहिए? कृष्ण का वंश बढ़ाना। लेकिन हम लगे हैं अपने गोत्र और अपने पारिवारिक वंश को बढ़ाने में, उनकी पूर्ति में लगे हुए हैं। और ये मेरा वंश, ये मेरा अंश, इसमें लगे, लेकिन है किसके अंश? कृष्ण के। तो अगर हम कृष्ण का वंश बढ़ाने में लग जाएंगे, भक्त बनाने में लग जाएंगे, तो फिर हमको इस वंश की क्या आवश्यकता है? इस वंश से कहीं उत्तम है कृष्ण के वंश को बढ़ाना, क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। तो क्या करना चाहिए? उनके अंश को बढ़ाना चाहिए या फिर अपने वंश को बढ़ाना चाहिए? उनके अंश के वंश को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपनी अहम ममेति, मम अहम, इन दो शब्दों से बाहर निकले, मम अहम, है ना। देखिए अहंकार के अंदर भी बोलते, बहुत व्यक्ति अहंकारी व्यक्ति है, बड़ा प्राउड है इसको, अहंकारी, उसमें अहम क्या है? मैं। और कार क्या है? कार, चलाने वाली कार। उसको बड़ा अहंकार होता है कि मेरे पास एक कार है, अहम कार, मेरे पास एक कार है, इसी बात का अहंकार हो जाता है व्यक्ति को। तो आप सोचिए कि अगर हम छोटी छोटी चीजों में जुड़े रहेंगे तो हम जो है इसी संसार में आसक्त होकर रहेंगे। इसीलिए कहा विलज्जमानया यस्यः, ये कैसी है? लज्जित है। लज्जा आती है किसको? माया को। और माया कहां रहती है? कृष्ण के पीछे, छाती पे नहीं, पीछे, छाती पे लक्ष्मी जी रहती है, पीछे रहती है, पीठ पे। क्यों? विलज्जमानया, बड़ी लज्जा आती है उसको, कृष्ण के सामने नहीं आ सकती है। जैसे हमारी छाया कहां आती है? पीछे या आगे? साइड में, पीछे, जहां से सामने से लाइट पड़ रही हो तो पीछे जाती है छाया। जो है जहां जहां हम चलेंगे पीछे पीछे छाया चलेगी। तो कृष्ण जहां जहां है उसके पीछे क्या है? माया है। इसीलिए उसको लज्जा आती है। और हम कहां है? जीव कहां है? माया के पीछे। कृष्ण उनके पीछे, माया, माया के पीछे जीव, हम। और हमको कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में माया है। और हमें करना क्या है? उसको माया को क्रॉस करके जाना है और कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी है। अब कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो माया कहां रह गई? कृष्ण के पीछे। वो हमारे पीछे पड़ सकती है? अब तो बाहर आ गए हम निकल के। तो करना क्या है? बस कृष्ण की शरण में तो जाना। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले है कृष्ण, उनके पीछे माया, माया के पीछे जीव। जीव को करना क्या है? यो ये माया है, इसने दो रूप से जीव को ढका हुआ है, आवरणात्मिका शक्ति, प्रेक्षात्मिका शक्ति दो रूपों से ढका हुआ है, आवरणात्मिका मतलब आवरण किया हुआ है। मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, मैं कौन हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कौन हूं, मैं लंबा व्यक्ति हूं, मैं कौन हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं कौन हूं, मैं सुंदर स्त्री हूं, मैं कौन हूं, मैं सुखी हूं, मैं कौन हूं, मैं बलवान हूं। ये क्या है, आवरणात्मिका शक्ति, पूरा आवरण किया हुआ है, वो देखने नहीं देती, पर्दा डाला हुआ कर्टन, कृष्ण का दर्शन ही नहीं कर सकता है। और साथ में प्रेक्षात्मिका, और कहां खींच के डाल देती है, इस भौतिक संसार के अंदर पड़े रहो, गलते रहो, कब तक पड़े रहो, अंगम गलितम मुंडम पलितम, जब तक अंग अंग न गल जाए और मुंड से बाल न टपक जाए तब तक पड़े रहो, अंगम गलितम मुंडम पलितम, पड़े रहो, है ना, इस संसार के अंदर तब तक व्यक्ति पड़ा रहता है। और उससे बोलो भी ना, अभी तो आप 60 वर्ष के हो गए, अब तो आपको भजन करना चाहिए। कह रहे नहीं, अभी तो शरीर से तो फिट हूं, परिवार वाले कहते हैं सरकार ने रिटायर किया है, लेकिन अभी भी मेरे को भौतिक ज्ञान है, तो मैं क्या करूंगा, कंसल्टेंसी करूंगा। तो वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, कृष्ण के वंश को बढ़ाने में नहीं लगता, अपने को ज्ञानी समझकर अपनी कंसल्टेशन करने जाना जाता है। अभी तो पुत्र पुत्री इतने इतने पैरों पर खड़े हो गए कि वह अपना परिवार चला सकते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है इसमें। तो समझदारी होती थी पूर्व जन्म में, पूर्व काल में राजा आदि क्या करते थे, 50 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग कर भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए जंगलों में वास करते थे, है ना, इसीलिए 50 की गिनती भी होती थी, है ना, 50 के बाद क्या होता था, 51 बा अब तो जा वन, लेकिन वो फंसा रहता है वहीं घर परिवार में, है ना, जाता ही नहीं है निकल करके। तो इतना आवरणात्मिका शक्ति ने बांधा हुआ है, और प्रेक्षात्मिका शक्ति उठाकर फेंकती रहती है भक्त को, वो भक्त नहीं बन पाता है, उसको बार बार माया में तू गया फिर से। मरते वक्त मैं कौन था, मैं पैसे वाला था, ये आवरण था, और ये प्रेक्षात्मिका उठा के फिर फेंक दिया एक और योनि के अंदर। फिर दोबारा से उसको मौका मिला, आइए आइए मंदिर, आइए मंदिर निर्माण कार्य में सहयोग करिए, आइए सेमिनार करिए, भागवत क्लास करिए, आश्रय क्लास करिए, भक्तों से जुड़िए। प्रभु जी टाइम नहीं है, आवरण। और फिर एक दिन शरीर छूटा, प्रेक्षात्मिक शक्ति ले ले, फिर दोबारा दूसरी योनि में। बार बार वो कृष्ण के तक जाने नहीं देती, जैसे फुटबॉल का गेम कितने लोगों ने देखा है, फुटबॉल का गेम बार बार प्रयास किया जाता है गोल के अंदर बॉल को डालने का, लेकिन जो गोल कीपर है वो बार बार आवरण करता है, बॉल को पकड़ लेता है और उठा करके सेंटर से दूर फेंक देता है ना, ऐसे ही माया का रोल है, गोल कीपर की तरह कृष्ण तक आने नहीं देना बस। और भक्तों का कर्तव्य क्या है, क्योंकि वो पार कर गए, भक्त जो है, जो रियलाइज्ड सोल्स हैं, आत्म साक्षात्कार भक्त हैं, वो कृष्ण के नजदीक पहुंच गए चरणों में, वो क्या करते हैं, इधर से भक्त को पकड़ने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं, लेकिन ये अपने आवरण को छोड़ ही नहीं पाता, ये बार बार बॉल के साथ सेंटर से पार फिर गिर जाता है ना। कारणम गुण संगो सद असद योनि जन्मसु, कारणम गुण संगो, जैसे जैसे गुणों का संग करते हैं सद असद योनि जन्मसु, कभी अच्छी योनि कभी बुरी योनि, कभी अच्छी योनि कभी, और गुणों को त्याग नहीं पाते, काट नहीं पाते हैं। और भगवान कैसे हैं, सदा शुद्ध सत्व में रहते हैं, ना तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर भगवान रहते हैं। और जो भगवान के आत्म साक्षात्कार भक्त हैं, जो भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, वो उसी स्तर पर रहते हैं, वो कोशिश करते हैं खींचने की, लेकिन हम फंस जाते हैं आवरण के अंदर, है ना। जैसे देखिए एक कथा आती है कि एक बार इंद्र को गुरु बृहस्पति के प्रति अपराध करने के कारण, अपने गुरु के प्रति अपराध करने के कारण बृहस्पति जी ने श्राप दिया इंद्र को, कहा तुम क्या बन जाओ, शुकर बन जाओ। और शुकर बनकर कहां चले जाओ, उठाकर प्रेक्षात्मिका शक्ति ने सुअर का शरीर दिया और आवरण दिया सुअर का, फेंक दिया उठाकर के, कहां, इस भौतिक संसार में। अब उसके साथ में वो तो था ही सुअर के शरीर में, साथ में मिसेस पिग भी थी, और साथ में पिगलेट्स भी थे उनके, अपने बहुत सारे, पूरी क्रिकेट टीम थी 15-16 की, और जहां जहां चलते थे फुर्र करते हुए चलते थे, इधर से उधर पीछे बच्चे भी चलते थे उनको साथ साथ में। तो ब्रह्मा ने देखा, चतुर्मुखी ब्रह्मा ने देखा कि अरे ये इंद्र देवी देवताओं का लीडर, इंद्र का मतलब होता है लीडर, है ना, जैसे गज इंद्र, गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब लीडर, हाथियों का जो लीडर था वो गज इंद्र। तो इंद्र वो कोई भी लीडर हो उसको इंद्र बोल सकते हैं। जैसे हमारे भी अगर लीडर हो तो कहा जाता है ये हमारे इंद्र है ना, लीडर मतलब इंद्र है ना, प्रभु जी इंद्र है हमारे लीडर है ना। तो इंद्र मतलब लीडर। तो इंद्र नहीं थे तो गद्दी खाली है। अब गद्दी खाली रहेगी तो क्या करेंगे, बुलाने जाएंगे कि नहीं, भाई जाइए जल्दी से बुला के लाइए। तो हंस वाहन पर बैठकर चतुर्मुखी ब्रह्मा नीचे आए और देखा वो इंद्र जो कि सारे देवी देवताओं का राजा है, स्वर्ण सिंहासन पर बैठता है और पीने के लिए सोमरस मिलता है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, खुशबूदार कुंड आदि हैं, ऐसा जो अवंतीपुरी का राजा है वो आज सुअर बन के घूम रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम क्या कर रहे हो। तो कहा जाता है जाति स्मर, जाति स्मर मतलब उसको स्मरण रहता है कि मैं पूर्व काल में किस जाति का था, ये देवी देवताओं को स्पेशल कृपा मिली है, लेकिन अपने ऐश्वर्य को भूल जाता है, ऐश्वर्य को भूल करके सिर्फ जाति स्मरण रहता है कि मैं कौन था। तो जाति स्मर से इंद्र को याद था कि मैं इंद्र हूं, लेकिन ये भूल गया कि मैं कितनी आनंदमय था। तो जब ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया, कहा चलो भाई इंद्र तुम्हारी गद्दी खाली है चलो, तो कहता है नहीं नहीं यहाँ पर ना मिसेस पिग से जो आनंद मिलता है ना वो वहां नहीं है। ब्रह्मा जी बोले पागल हो गया, वहां पर अप्सराओं की गिनती देख, रंभा है वहां पर, मेनिका है ना, वहां पर उर्वशी है, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं और तू उस सुंदरी की इससे कर रहा है। कहा नहीं नहीं वहां पर मेरे बच्चे नहीं है, यहाँ पर कितने सुंदर है, जब मैं कीचड़ में बैठता हूँ अपनी पूंछ को घुमा के तो फुर फुर करके मेरे ऊपर चढ़ते, इतना आनंद इतना प्रेम है इनके साथ में। तो ब्रह्मा जी बोले हद हो गया यार, कितना आवरण है इसके ऊपर है ना। इसी तरह हम भी हैं, अपने अपने घरों में किसी के पेट में दर्द है, किसी का लीवर खराब है, किसी के आंखें नहीं दिखती, हड्डियां घुटने काम नहीं कर रहे, पीठ काम नहीं कर रही, फिर भी आया करिए मंदिर आया करिए भजन करा करिए, नहीं बस टाइम नहीं मिलता, ये आवरण है, खींच रहे हैं भक्त और भगवान। ब्रह्मा जी कौन है, भगवान के भक्त है वो खींच रहे हैं इंद्र चलो, लेकिन नहीं ऐसे हमें भी भक्त खींच रहे हैं चलो, हम नहीं चलते हैं, हम अपने अपने आवरणों के अंदर ही खुश रहते हैं। तब ब्रह्मा जी उसको खींचने का प्रयास करते रस्सियों में बांध करके कि चलो शुक्र की सोनी को छोड़ो चलो, तब भी नहीं चलता। ब्रह्मा जी कहते इसकी आसक्ति समाप्त करनी पड़ेगी, मिसेस पिग को लाठी लेकर मार देते हैं और साथ में उसके जो 13-14 बच्चे थे 15-16 उन सबको भी एक एक करके मारते हैं, और मारने के बाद में कहते हैं अब तो ये सब समाप्त हो गया अब तो चलो। तो कहता है कि अरे मैं चला जाऊंगा, आपने मेरा वंश समाप्त कर दिया है, अब तो मुझ पर और बड़ी जिम्मेदारी आ गई दूसरा वंश क्रिएट करने के लिए है ना, तभी तो मुझे बहुत भोग करना है, बहुत विलास करना है। यहां पर रस्सी से खींचा तो कहता है ची 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 मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, सिद्धो अहम बलवान सुखी ईश्वर अहम परम भोगी है ना। गीता में भगवान कहते हैं व्यक्ति को लगता है ईश्वर कौन, माया जी, भगवान कौन, हम ही हैं भगवान, नर ही नारायण है जी, ये सब मूर्ति मूर्ति पूजा बेकार है, हम तो मानते हैं हर एक में भगवान है और सबसे बड़ा मैं हूं है ना, ईश्वर अहम परम भोगी मैं भोग करता हूं और सिद्ध हो मेरे से ज्यादा कोई सिद्धि नहीं है जी। इस कौन वालों को क्या पता भक्ति के बारे में है ना, हमसे पूछो तपस्या क्या होती है, हम 30 साल से हिमालय पर बैठे थे, सिद्ध अहम और बलवान, अरे तुझे मेरी ताकत का क्या मालूम है, मैं कितना शक्तिशाली हूं और क्या हूं अंत में सुखी। लोगों से बोलो ना दुखालयम शाश्वतम, अरे फालतू बात लिखी है, हमारे पास मर्सिडीज कार है, बढ़िया घर है, सुंदर पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, एक अमेरिका में सेटल है, एक यूरोप में है, फिर आप कह रहे हैं कि दुखालयम, हमारे लिए तो सुखालयम है ये, सिद्धो अहम बलवान सुखी, ये कौन है, आवरण आत्मिका शक्ति में वो बोल रहा है। लेकिन जिस पल अंगम गलितम मुंडम पलितम हो जाएगा और वेंटिलेटर पे पड़ा होगा तब अंतकाल पछताए क्या चिड़िया चुग गई, उठाकर प्रेक्षात्मिका शक्ति फिर दोबारा पुनः दूसरी योनि में फेंक देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसे समझें, इसीलिए वर्णन करते हैं, कहते हैं जीवेरे बनाए गधा, ये माया शक्ति क्या बना देती है जीव को, गधा बना देती है। गधा कैसा होता है, प्रभुपाद जी ने गधे का बहुत इस्तेमाल किया है ना अपने शास्त्रों में, गधा भी खुश होता होगा, मैं बड़ा शास्त्रिक व्यक्ति हूं है ना, क्योंकि प्रभुपाद ने उसको इतने जगह इस्तेमाल किया, जानवरों को विशेष इस्तेमाल किया है, मूढ़ाम ना भी जाना थी, है ना भगवान, तो मूढ़ का आगे बोलते हैं गधा होता है हर जगह, तो प्रभुपाद जी का बड़ा फेवरेट एनिमल है गधा, है ना, वो हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और आचार्यों का है, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर होते हैं जीवे रे बनाए गधा, ये माया जीव को गधे जैसा बनाती है। गधा कैसा होता है, उसको लगता है कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा तभी तो घर में पैसा आएगा। प्रभु जी अगर हम आश्रय में आएंगे, प्रभु जी अगर हम भागवत क्लास सुनने आएंगे, प्रभु जी अगर हम मंगला आरती आएंगे, प्रभु जी अगर हम 2 घंटे बैठ के जप करेंगे, तो फिर हमारा गृहस्थ जीवन चौपट नहीं हो जाएगा, हमारी दुकानदारी बंद नहीं हो जाएगी, हमारे बिजनेस हमारी नौकरी चौपट नहीं हो जाएगी। गधा क्या सोचता है, चारों तरफ क्या है, मेहनत करूंगा तभी तो घास खाऊंगा, लेकिन घास तो हर जगह है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं घास तो हर जगह है, चाहे तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाए और घास खा सकता है, लेकिन नहीं, उसको क्या लगता है मैं मेहनत करता हूं तभी मैं खाता हूं। लेकिन भगवान कैसा है, भगवान ऐसे हैं कि अगर काली रात में काली पहाड़ी पर एक चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो, वैसे तो इतना छोटा घुंघरू बनता नहीं है लेकिन बांध दो, चींटी के कितने पैर होते हैं, 8-10 कितने, बहुत सारे होते, देखा नहीं, मतलब चींटी नहीं देखी भगवान को क्या देखोगे आप, चींटी के चार पैर होते हैं ना मेन चार, तो चार पैर में से अगर मान लो घुंघरू बांध दो तो ऊपर वाला ऐसा है, कहते हैं कि चींटी के पैर में बंधा घुंघरू साहिब उसे सुनता है, ऐसे साहिब मतलब भगवान, तो कहते हैं कि चींटी के पैर में जो घुंघरू की आवाज सुनाई देगी हमको, पहले तो चींटी नहीं दिखाई देती, पैर नहीं देखे कई लोगों ने तो आज तक, है ना, मार देते उसको तब उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, चींटी के पैर छोड़ो इतने छोटे, उसमें छोटा घुंघरू, उसकी आवाज कितनी होगी सूक्ष्म, उसको भी साहिब बड़े ध्यान से सुनता है। काली रात में काली पहाड़ी पर अमावस्या के दिन काली कोठरी में काली चींटी चढ़ रही हो, भगवान को पता होता है बेचारी सुबह से भूखी है, उसकी चीनी का अरेंजमेंट करते एक दाना दे देते हैं उसको। ऐसे प्रभु प्रोटेक्शन करने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, और हम कैसे हैं, मैं हूं और मेरा है, भगवान देखा नहीं होता नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। प्रभु जी पता नहीं कब भगवान, पता नहीं, विश्वास तो हो नहीं रहा प्रभु जी भगवान है, बहुत दिन हो गए जब करते करते माला घिस गई, 2 बार रिप्लेस करा ली, टूट गई हमारी, तो है ना, सोचो आप कैसे, भगवान को कहा गया है भगवान ऐसे हैं जैसे कि हमारी पलके हैं, कैसे हैं भगवान जैसे हमारी पलके हैं। अगर आप अपनी आंख में उंगली मारना चाहो तो क्या होगा, पहले क्या आएगी, पलके आएगी कि नहीं आएगी, कितने लोग मानते आएगी, कई लोगों की नहीं आएगी इसलिए हाथ नहीं खड़ा किए। आंख में उंगली मारेंगे तो पहले पलक आएगी या आंख फूट जाएगी, आती है, आप दवाई डालने जाते हैं ना आंख में तो भी आंख के अंदर दवाई डालने से पहले पलक बंद हो जाती है, तो भगवान ऐसे ही है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है ना उसके लिए मैं ऐसा ही बन जाता हूं, आपकी परेशानी बाद में आएगी, आपकी पलक रूप में उस परेशानी के आगे कवरिंग बन के मैं पहले आता हूं। तो कितने लोग हम इस पे विश्वास कर पाते हैं बात पे, हमें लगता है नहीं मेरी रक्षा मैं खुद करूंगा, सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ेंगे मुझे अपने 4-5 तभी तो मेरी रक्षा होगी, और हाथ में गीता लेके घूमता व्यक्ति तो सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए 10-15 साथ, तो फिर क्या हो गया, उसकी रक्षा करने के इसके उस विश्वास ही नहीं है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो नहीं है उसे मैं प्रदान करूंगा, जो है मैं उसकी रक्षा करूंगा, चिंता मत करो। लेकिन व्यक्ति को बहुत चिंता रहती है, अधिक चिंता में व्यक्ति ग्रस्त रहता है, क्योंकि सिद्धो हम बलवान सुखी से पीड़ित है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये किसका घर है जी मेरा, किसने बनाया जी, गांव से कुछ नहीं लेके आए थे, जो खुद बनाया, ये क्या है, ईश्वर अहम, मैं ही तो ईश्वर हूं, इसीलिए ईश्वर के पास जाने की आवश्यकता नहीं दिखती है। इसीलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जीव जागो गौरा चांद बोले, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोताया निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले, कोताया निद्रा जाओ माया। पिशाचिराको ले जीव जागो जीव जागो। गौरा चांदा बोले जीव जागो जीव जागो। गौरा चांदा बोले, लेकिन हम जीव ऐसे हैं जागते नहीं है। गौरा चांद खड़े थे मंगला आरती में, आप लोग नहीं थे, है ना। गौर चांद सोच रहे जीव जागता ही नहीं, सोया पड़ा है ना। वो जीव तो जाग जाएगा जो सच में सोया हो, जो जानबूझकर सोया, उसे कोई जगा सकता है। मान लो जैसे सर्दी है और 3:30 बजे अलार्म जगा और आपकी आंख खुल गई और आपकी आंख को आपको नींद भी नहीं आ रही, लेकिन ठंड इतनी, आपने देखा बाहर बहुत कोहरा है और आपने क्या किया, रजाई ली और ऐसे करके सो गए। अब 5 मिनट बाद ही आपके परिवार के लोग आए और आपको कहा हरि बोल प्रभु, हरि बोल हरि बोल, चलो चलो मंगला आरती चलना है। अभी क्या बोल सकते, आदमी सोया हुआ है, सोया नहीं, ये जान पूछ करके रजाई में मजे ले रहा है ना ठंड के। तो इस व्यक्ति को कैसे उठाया जाता है, उसको तो जीव जागो उसको तो कह सकते हैं जो सोया हो, लेकिन जो जग करके सोया है उसको कौन उठाएगा। आप लोगों को नहीं मालूम मंगला आरती में गौर चांद खड़े होते हैं, दर्शन होना चाहिए, सबको मालूम भगवान है, नाम नामी में भेद नहीं है, हरे राम हरे राम हरे राम, एव केवलम, कलो नास्ते नास्ते नास्ते, बोलते बोलते अंदर सब प्रचारक बन गए। लेकिन कितने लोगों को हरि नाम पर विश्वास हुआ कि यही प्रभु हरि नाम है। एक बार एक कक्षा में सब लोग जप कर रहे थे, एक भक्त ने आकर बोला चलिए चलिए आप लोगों की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दे रहे हैं। पुजारी को सही बात सुनकर सारे भक्त बोले वाह प्रभु दर्शन दे रहे हैं, सब माला छोड़ छोड़ कर गए दर्शन करने। वहां पर सीनियर डिवोटी बैठा था, एक बोला आओ आओ नकली भक्तों लेक्चर देते हो है? बोलते क्या हो, अभिन्नत नाम नामिना, नाम और नामी में भेद नहीं है, ये नाम ही प्रभु है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, तो फिर अब दर्शन करने किसके आए हो, दर्शन किसके करने आए भाई, ये तो नाटक हो गया ना। जब भी कर रहे हैं यही भगवान, और फिर जब पता चला भगवान आ गए तो इसको छोड़कर दर्शन करने चले। जिसने दर्शन करना है उसने यही करना है। रसो अप्यस्य हम कौन्तुए, श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने बोला कि प्रभुपाद क्या आप हमको दर्शन करा सकता है, बंगाल में प्रभुपाद बैठे थे। तो प्रभुपाद जी बोले हम दर्शन तो करा सकते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी अभी श्रेष्ठता नहीं दर्शन करने की। ऐसा कैसे बोलते स्वामी जी, एक मौका तो दीजिए हमको, अगर आप कराएंगे तो हम करेंगे दर्शन। कहा ठीक है, प्यास लगी है, कह रहा हाँ, पानी पियो, पिया, दर्शन हुआ, कहे पानी में दर्शन कैसे होगा। कहा भगवान ने गीता में कहा रसो अप्यस्य हम कौन तू, हे कुंती पुत्र जल का स्वाद मैं हूं, तो फिर जल के स्वाद में दर्शन होना चाहिए। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं खुले हैं, शास्त्र चक्षुषा नहीं है, इसलिए क्या है आपको कभी दर्शन नहीं होगा। नाम नामी हरि नाम हरे नाम हरे नाम केवलम में क्या बोल रहे हैं, चिंतामणि है ना, ये चिंतामणि जो है भगवान का नाम कैसा है, चिंतामणि है ना। अभिन्नत नाम नामी ना, नाम और नामी में भेद नहीं है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं दर्शन करने के लिए कहां कहां चले जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में ढूंढ रहे हैं भगवान को, कहां जा रहे जी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कर जो घर में था, जो ये गुरु ने जो पोटली में दिया, ये भगवान नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी गोलोक धाम को लेके कैरी करके घूम रहा है, और फिर क्या बोलता है मेरी बड़ी अभिलाषा है गोलोक धाम जाने की। अरे गोलोक धाम तो ये है, जिस व्यक्ति ने इस माला जप को इसी जीवन में जीते जी गोलोक धाम समझ लिया उसका गोलोक धाम निश्चित है, लेकिन जिसने इसको नहीं समझा उसका भी निश्चित है कि गोलोक धाम तो नहीं जा रहा है, वो नहीं निश्चित है। तो बहुत ही समझने वाली बात है। इसीलिए ये जो भगवान की माया आवरणात्मिक का शक्ति है इसको पार कैसे करें, तो भगवान गीता में कहते हैं देवी एशी गुणमयी, इसमें बड़े गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, देवी एशी गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। अगर कोई मेरी शरण में आएगा तभी वो इस माया से पार हो सकता है, अन्यथा सबके बस की बात नहीं है। इस माया को पार कर जाना बहुत मुश्किल है। देवी ऐसी गुणमयी, बहुत गुणों की बनी हुई है ना। इतने संसार में कलर कैसे हैं पता है आपको, इतने सारे कलर है, कितने कलर है, मल्टी कलर्स, लेकिन उसके शुरुआत के 3 बेसिक कलर कौन से हैं, रेड ग्रीन व्हाइट ब्लू RGB, रेड ग्रीन ब्लू, इन 3 कलर के मिश्रण से ही विभिन्न कलर प्रकट होते हैं, रेनबो बन जाता है ना। और इतने सुंदर सुंदर पत्ते फूल जानवर आदि के शरीर में रंग दिखते हैं। इसका मुख्य बेस नींव के तीन ही मुख्य कलर है, तीन रंग है, है ना, रेड ग्रीन ब्लू। ऐसे ही आप देखिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन ही गुण है, लेकिन इनको बन के बुन बुन के बुन बुन के 3 × 3 9 9 × 9 81 81 × 81 विभिन्न गुण प्रकट हो चुके हैं संसार में। देवी ऐसी गुणमयी, इतने उसने गुण बुन दिए हैं, जाल बना दिया है, उसके अंदर फंस गया है व्यक्ति, जैसे पंछी को पकड़ा जाता है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, ये जो माया है भगवान कह रहे मेरे पीछे जो है ये मम माया, मेरी माया मेरे पीछे है, दुरतया बड़ी खतरनाक है, लेकिन मां में भी ये प्रपद्धंते, जो एक घूम करके मेरी शरण में आ गया, माया तो पीछे रह गई, माया में ताम तरंती थे, माया से पार कर जाए, सरल विधि भगवान ने बताया। परंतु भगवान के शरण में व्यक्ति जाता नहीं है। आप देखिए महाभारत के अग्नि पुराण में बहुत सुंदर कथा आती है सीखने योग्य कि किस प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए। शरणागति का लक्षण है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होगा, अगर कोई व्यक्ति भगवान को शरणागत होगा तो गुरु को शरणागत होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति से उत्तम है मेरे भक्त की भक्ति, है ना। गोपे भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, दास के दास का दास बनना। तो इसका मतलब अगर कोई कृष्ण की शरण में होगा तो गुरु की शरण में होगा कि नहीं होगा, वैष्णव की शरण में होगा कि नहीं होगा। मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में होगा अगर वो मुझसे आसक्त होगा। अगर वो कृष्ण से आसक्त है तो वो कृष्ण के आश्रय में है, और कृष्ण के आश्रय में मतलब कृष्ण के भक्त के आश्रय में है, है ना। गुरु आश्रय, गुरु पद आश्रय, हमने गुरु के पद का आश्रय लिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु आश्रय में नहीं है, कहे मैंने तो कृष्ण का आश्रय लिया है, तो वो गलत है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, जो ये कहता है मैं आपका भक्त हूं वो मेरा भक्त है, जो ये कहता है मैं आपके भक्त का, बहुत जरूरी बात। तो शरणागति कैसी है, बृहस्पति जी है, उन्हीं का आज प्रसंग चल रहा है। तो बृहस्पति जी जो हैं देवताओं के गुरु हैं, और उनकी पत्नी का नाम है तारा, तारा नाम की इनकी पत्नी, और गुरु जो हैं बृहस्पति, इनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है कच्छ। क्या नाम है, छ नहीं च, कच्छ, कच्छ। तो कच्छ जो है, ये जो कच्छ थे ऋषि कच्छ, इन्होंने उदाहरण दिया है कैसे व्यक्ति को शरणागत होना चाहिए अपने गुरु की वाणी पर। अब इनके जो गुरु थे वो इनके पिता ही थे, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, और देखा गया कि सभी देवताओं को मारा गया है असुरों के संग्राम में, असुरों ने आहाकार करके संग्राम में सभी देवताओं को मार दिया। और इधर शुक्राचार्य जो है वो बड़े ही ज्ञानी है, उनको मृत संजीवनी विद्या आती है, मृत्यु से कैसे संजीवनी प्रदान करनी है, जीवन प्रदान, पुनः जीवन प्रदान करने की शक्ति संजीवनी, ये किसके पास में है, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य क्या करते थे, अपना मंत्र पढ़ते थे और मृत संजीवनी विद्या से पुनः असुरों को प्रकट करते थे, और उधर वो जाकर देवताओं पर फिर हमला करते थे। वो बोले ये तो बड़ी भयानक बात है, हम सारे मारे जा रहे हैं और ये तो असुर वापिस पुनः जीवित होते हैं, कुछ ऐसा करो कि हमें ये मृत संजीवनी विद्या आ जाए। तो भक्तों ने पूछा, देवताओं ने, बृहस्पति जी आप भी तो गुरु, आपको नहीं आती। कहा कि हम लोग, हमें तो ये विश्वास था कि हमारे पास अमृत कलश है, अब अमृत कलश है तो हम उससे अमर हो जाएंगे, लेकिन अभी ये मृत संजीवनी विद्या जो है वो उस अमृत से ऊपर है, क्योंकि हमारे पास इतना अमृत नहीं कि सभी देवताओं को पिला पिला कर वापिस पुनः जीवित करे, वो तो कभी कभी इमरजेंसी प्रोडक्ट रखा हुआ है हमारे पास में, लेकिन ये तो अभी इमरजेंसी आ गई है, जैसे फ्लू आ जाता है, डेंगू आता है, स्वाइन, तो उसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में जगह नहीं बचती है, तो गेट के बाहर ही जो कॉरिडोर है उसी में से पाइप घुसा घुसा के ना इसे लटका लेटा देते हैं लोगों को। खैर अभी इस टाइम बस सलाइन वाटर चलता रहे, व्यक्ति लेटा रहे, बच जाए, बस वही बहुत है, ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसी स्थिति आ गई, सभी देवी देवता मारे जा रहे हैं, बार बार संग्राम हो रहा है, और ऐसे में मृत संजीवनी विद्या जरूरी है। तो बृहस्पति कहते हैं कच्छ तुम जाओ, मैं तुम्हारा पिता भी हूं तुम्हारा गुरु भी हूं, अपने पिता की वाणी और अपने गुरु की वाणी मानते हुए जाओ, मृत संजीवनी विद्या सीख के आओ। ये तो बड़ा मुश्किल है ना, मतलब बिल्ली जो है वो रोज चूहे को खाती थी, सारे चूहों ने कहा बिल्ली खा लेती है, हमें पता ही नहीं चलता कब अचानक आके ऐसे करके पंजे में पकड़ लेती है और खा जाती है, जैसे मृत्यु आती है ना ऐसे पकड़ती है और समाप्त कर देती है। तो सबने का एक काम करते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब आएगी तो टुन 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 आवाज होगी तो हमें पता चल जाएगा, हम भाग जाएंगे इधर उधर, है ना। अभी मीटिंग बुलाई गई कि बांधेगा कौन गले में घंटी, है ना, जो जाएगा वो घंटी बांधने देगी। ऐसे लोग सिक्योरिटी गार्ड रख के सोचते हैं मृत्यु के गले में घंटी बांध दी, बांध सकता है कोई? तो ये मृत्यु के गले में घंटी बांधना बड़ा मुश्किल है, माया के गले में घंटी बांधना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से कहा कि अब क्या किया जाए, तो कच्छ जो थे वो चले गए और उन्होंने जाकर प्रणाम किया इंद्र के जो गुरु थे बृहस्पति। और इधर जो थे बृहस्पति के प्रति इंद्र बार बार अपराधी करते रहते हैं, और इस बार भी अपराध कर दिया, ये कह रहे हैं कैसे गुरु हैं आप, मतलब मृत संजीवनी नहीं आती आपको, मतलब मजा नहीं आया आपके साथ में, हम तो छोड़कर ना जा रहे हैं दूसरे ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, हम तो हमें मजा नहीं आया आप में, है ना, गुरु त्याग कर दें। अब बृहस्पति जी कह रहे हैं अरे मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु के प्रति शरणागत करो, जीवत मरत जैसी भी स्थिति हो, जीने वाली मरने वाली साथ रहना चाहिए, आप तो छोड़कर चले गए। सारे देवताओं ने अपराध किया, बृहस्पति जी बड़े दुखी थे, परंतु कच्छ जब आए तो उन्होंने कहा कि जाओ कच्छ तुम शुक्राचार्य के पास जाकर ज्ञान सीखो। अब ये शुक्राचार्य के पास गए तो शुक्राचार्य भी कोई अज्ञानी थोड़ी थे, बड़े ज्ञानी थे। शुक्राचार्य बोले कि आया तो है मृत संजीवनी सीखने, पर इसे ये नहीं मालूम कि मैं जो हूं वो शुक्राचार्य हूं, असुरों का गुरु, असुरों पे कितना दिमाग होता है, कितनी चीजें बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाए, वायरस बनाए, वो एंटीवायरस बनाए, फिर वायरस बना दिए, फिर एंटीवायरस बनाए, फिर वायरस बना दिए, वो कितना आगे होते हैं हमारे से, है ना। ये पासवर्ड बनाए, पासवर्ड क्रैक करने वाले बना दिए, है ना। ये फेसबुक बनाया, फेसबुक में नकली प्रोफाइल वाले बना दिए, मतलब तुरंत आगे निकल जाते हैं, इतने असुर हैं, कितना ज्ञान है उनके पास, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं है। ऐसे असुर के गुरु कितने ज्ञानी होंगे, वो बोले आ जा बेटा आ जा, सिखाऊंगा नहीं तुझे, बैठ जा मेरे पास। बैठ गया, कहा अतिथि का स्वागत करना चाहिए, अगर दुश्मन भी आपके घर आए, दुश्मन भी आपके मंदिर में आए तो क्या करना चाहिए, हाथ जोड़कर विनम्रता से अतिथि देवो भवा, अतिथि को देवता के समान मानना चाहिए। ये नहीं हमारे पाले वाला है तो उसको महाप्रसाद देंगे, दूसरे पाले का है तो उसको कहेंगे जा मंदिर में चढ़ना मृत्यु के काम चला ले, ऐसे नहीं। अगर महाप्रसाद सबके लिए है तो फिर उसको समान दृष्टा, पंडिता नाम समदर्शना, समदर्शी होना चाहिए उस पंडित को, तभी पंडित है, ब्राह्मण है, तो उसी समान दृष्टि से उनको देखना चाहिए। तो ये कच्छ को उन्होंने स्वागत किया और बैठा लिया। अभी बोले सिखाऊंगा नहीं, बैठा रहे। अब वो भी बेचारा आ गया, खाता रहा, पीता रहा, मजे से रहता रहा। और उसने एक काम बढ़िया किया, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से उसने प्रेम कर लिया। प्रेम करने से क्या हुआ, अभी तो वो असुरों का क्या बन गया, दामाद हो गया। तो शुक्राचार्य तो उसकी रिस्पेक्ट करने लगे दामाद की तरह, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, चाहे दामाद बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, मृत संजीवनी तो नहीं बताऊंगा। कहा यार सच्चा गुरु है ये तो, है ना, ऐसे ना, अरे बड़े गुरु आदमी हो यार, बता नहीं रहे। उन्होंने कहा बताऊंगा नहीं, शुक्राचार्य ने कहा। अब कच्छ बोला मता तो करना है, बृहस्पति जी मुझे कहेंगे, मेरे पिता भी हैं, गुरु भी हैं, कि मैंने गुरु वाणी को पूर्ण नहीं किया, ये मेरी शरणागति फेल हो जाएगी। इधर असुरों को पता चला कि हम तो अपने उसमें थे कि देवयानी से हमारी शादी होगी, ये अपोजिट पार्टी वाले से शादी कर दी, भाई इस्कॉन का भक्त है, इस्कॉन में तो शादी करेगा, है ना, ब्राह्मण है ब्राह्मणों में करेगा, लेकिन ये तो गलत हो गया कि देवताओं का दामाद चुन लिया इन्होंने और असुर जो थे लड़की थी, असुरी पुत्री का विवाह और देवताओं का पुत्र, ये तो गलत बात, सबने का किडनैप करो भाई इसको, दामाद जी को फिनिश कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। तो उन्होंने रात को इंद्र को इसको कच्छ को उठा लिया और उठा करके बड़ा वाला जो उनका देखा होगा आपने खरपाल होता है ना बड़ा वाला, इसे तलवार से भी मोटा वाला जिसके टुकड़े हो जाएं तो एक भी बच नहीं सकता है, बोटी बोटी काटने वाले जो होते हैं वो ले जा करके कच्छ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरा बोटी बोटी काट करके और उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया। अब जब समुद्र में फेंक दिया, देवयानी आई अपने पिता के पास, कहती है मेरे पति नहीं दिख रहे, है ना, उनसे मेरा प्रेम था, उनसे आपने मेरा विवाह किया, कहां गए कच्छ, मेरे स्वामी कहां है। कहा कच्छ तो रन ऑफ कच्छ से बाहर चले गए हैं, वो समुद्र में फेंक दिया उनको असुरों ने। कहा रे मेरे मेरे पति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, यही आपका प्रेम है अपनी पुत्री के लिए, मृत संजीवनी का प्रयोग क्यों नहीं करते, उनको पुनः जीवित करिए। शुक्राचार्य बोले अच्छा अच्छा दुखी मत हो, तो प्रेम में आ जाता है ना पिता, तो उन्होंने कहा ठीक है, मृत संजीवनी से उनको पुनः जीवित कर दिया। दूसरे दिन असुर आए कि अब तो आपके दामाद जी को खत्म कर दिया, आप हमारा नंबर लगाइए, विवाह करिए। तो देखा आकर के तो महल में कच बैठा प्रसाद ग्रहण कर रहा है, खा रही है, अचंभित कह रहे कैसे हो गया। शुक्राचार्य बोले अरे वो पुत्री ऐसे ऐसे कहने लग गई, कह रहे आप कैसे गुरु है, ये तो गलत किया आपने, मृत संजीवनी सिर्फ असुरों पर प्रयोग करने के लिए है, उनके लिए नहीं है, देवताओं पर प्रयोग करने के लिए। इनको कहा कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं, इस बार इसको ऐसी स्थिति में फेंकेंगे कि ये मृत संजीवनी भी काम ना करे। रात को फिर उसे उठा लिया दूसरी बार पहली बार उठाकर क्या किया था, टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिया। अभी दूसरी बार उठा करके वो आपकी होती है ना मिक्सर जूसर ग्राइंडर, है ना, है क्या बोलते हैं, जूसर मिक्सर ग्राइंडर ऐसी कुछ है ना, जेएमजी मिक्सर ग्राइंडर। तो वो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, उसको ग्राइंडिंग मोटर के अंदर, जहां पर एकदम उसके आप वो पाउडर बन जाए, ऐसे में उसको घर पूरा घुसा दिया, उसको कच को उल्टा करके ऐसे घुसा दिया, उसके टुकड़े 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 हो गए, और उसका पेस्ट बना करके, पेस्ट बनाया ऐसा एकदम घोल बना करके, और कहा अब हम इसको कहां भेज देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं। अब इस बार समुद्र में फेंक दिया पेस्ट, कह रहे टुकड़े टुकड़े तो बोटी बोटी तो जोड़ना फिर भी सरल है ना, मान लो अगर कोई प्लास्टिक का आइटम टूट जाए तो फेविक्विक लगा के जोड़ सकते हैं, लेकिन कांच टूट जाता है टुकड़े टुकड़े होकर तो जोड़ना मुश्किल होता है, अब कैसे जोड़ेगा। तो फिर पुत्री रोने लगी, कहा मेरे पति के साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हो आप लोग, दामाद जी का पता ही ठिकाना नहीं है, रोज रात को उठ जाते हैं, रोज रात को फट जाते हैं, ऐसी ऐसी इज्जत होती है दामाद की, कलयुग में तो वैसे ऐसे ही होता है, दामाद की इज्जत ऐसी है, लेकिन वो तो कलयुग नहीं था। तो बोले कैसा व्यवहार हो रहा है दिव्य, ऊपर के लोगों के अंदर ऐसी स्थिति है स्वर्ग लोगों में। तो कहा कि पुला के लाइए पुनः, मृत संजीवनी इस्तेमाल करके फिर से उसे पुनः जीवित किया। फिर दूसरे दिन आए, विवाह करना चाहते हैं आपकी पुत्री से, सभी असुर माला वाला डाल के सेहरा वेहरा लगा के तैयार होके बैंड वैंड लेकर आ गए। कहा कि शुक्राचार्य जी आपकी पुत्री को रोने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं बलशाली वीर। देखा वहां पे कच्छ प्रसाद पा रहा है, अरे अरे कमाल की बात है, रोज रात को इसको फिनिश करते हैं, रोज पुनः जीवित हो जाता है, इसमें इतनी शक्ति कहां से आती है। शुक्राचार्य बोले, वो फिर से पुत्री रो रही थी, कहा शुक्राचार्य जी ये बहुत हो गया, मतलब ये तो मतलब टू मच है, ऐसे थोड़ी होता है, हमारा दुश्मन है, हम उसको पीस पीस के काट काट के टुकड़े करके फिनिश कर देते हैं, आप उसे पुनः मृत संजीवनी से जीवित करते हैं, आपकी पुत्री खुश, आप खुश, मैं और मेरा में आप फंस गए, आप तो गुरु हो, मैं मेरा से बाहर निकलो। तो कहा ठीक है, आप इस बार देख लेना कुछ ऐसा करना ताकि मैं नहीं इस्तेमाल कर पाऊं। और ज्ञान लगाया, एंटीवायरस के ऊपर वायरस का एंटीवायरस निकाला उन्होंने, कहा इस बार दोनों प्रयोग करेंगे। फिर रात को उठा लिया उसको तीसरी बार, अब इस बार क्या किया, टुकड़े टुकड़े किए पहले, है ना, उसके बाद टुकड़ों को लेकर ग्राइंडिंग मोटर में डाला, उसका पूरा जूस वूस बन गया, पेस्ट बन गया, जा पूरा कच का, है ना, कच का कचूमर निकाल दिया पूरा। तो कचूमर लेकर के और उसका पेस्ट उसमें डाला, मदिरा के प्याले के अंदर डाला, और वो मदिरा का प्याला शुक्राचार्य को रोज रात को वो मदिरा पिलाया करते थे सारे। अभी असुरों के गुरु तो वैसे ही हैं, उनके गुरु भी वैसे, चेले भी वैसे ही, है ना, लालची गुरु नकली चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, है ना, तो वो नरक वाले ही थे, गुरु भी वैसे ही शिष्य भी वैसे। तो रोज इधर इंद्र के शिष्य जो थे बृहस्पति आदि, ये सोमरस पिलाते अपने गुरु को, सोमरस शराब नहीं होती है, सोमरस एक स्पेशल पदार्थ है जो कि सुगंध प्रदान करता है ना, जिसे कहते हैं फॉल्स, जैसे फ्रूट बियर आती है ना मार्केट में, फ्रूट के जैसा होता है, लेकिन वो हम उसको लोग बोलते हैं अरे इंद्र आदि भी तो सोमरस पीते हैं, हम भी सोमरस पी रहे, अरे उनका सोमरस जो है वो अमृत समान है, 13-50 रुपए का पौआ है ना तो उसका उसका कोई बराबरी है आपस में, वो सोमरस पीते हैं आलिशान, और ये यहां पर बराबरी कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो जो सोमरस पिलाते थे, ये अपने गुरु को क्या पिलाते थे, मदिरा पिलाते थे। इन्होंने मदिरा के अंदर उसको कच्छ को पिला दिया, कहा इसके पेट में फेंक देते हैं, है ना, तो कच्छ का पेस्ट बना करके मदिरा में मिक्स करके और उनके पेट में पिला दिया। अब शुक्राचार्य तो पी गए, जब पी गए तो उन्होंने बोला कि आज क्या किया आप लोगों ने कच्छ का, क्या कहा, क्या करना क्या था, हो गया काम, खरे क्या काम, कहे आपके पेट में डाल दिया उसको, कहा खरे कहां से पेट में डाला, मैंने तो कुछ खाया नहीं, खरे पिया तो था, पिला के इसमें घोल बना के पिला दिया आपको। कह रहे तो गलत हो गया, अब तो दो ही रास्ते हैं कि अगर आप पुत्री रोएगी और मैं उसको पुनः जीवित करना चाहूं तो वो शरीर को फाड़ के बाहर निकलेगा, इतना बड़ा पुरुष है, उसके सारे टुकड़े जुड़ जाएंगे, मैं फट जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अब वो बड़ा दुखी था, लेकिन आत्मा जो है अभी समाप्त नहीं हुई है ना, आत्मा तो है ही है साथ में, और वो बंधी हुई है अपने शरीर से कि कभी पुनर्जीवित हो सकता है, क्योंकि भाई हमारे भी मृत्यु होने के बाद में 10 दिन तक तो आत्मा वहीं रहती है उसी स्थान पे, शरीर को जला दिया जाता है, फिर आत्मा धीरे धीरे पलायन करती कहती अब तो कोई चारा नहीं है, आत्मा शरीर भी जला दिया, बच्चे भी चौथा वौथा करके घर भर से निकल गए अपने नौकरी वोकरी पे, कह रहे पिताजी बैठे बैठे रहे हम कैसे अपना काम धंधा छोड़ दें। तो इस तरह से वो जो आत्मा थी वो अभी पेट में ही थी, तो अंदर से वार्तालाप शुरू हुआ शुक्राचार्य के साथ, कहा मुझे पुनः जीवित कर दीजिए मृत संजीवनी से, कहा अगर तुम्हें जीवित किया तो मेरा शरीर फट जाएगा। तो उसने कहा कि देखिए एक तरीका है आपको बचाने का, कहा क्या कि आप मुझे मृत संजीवनी को पहले सिखा दीजिए, फिर मृत संजीवनी से मुझे जीवित कर दीजिए, जब मैं जीवित होकर के बाहर निकल जाऊंगा और आप मृत हो जाएंगे तो मैं मृत संजीवनी से आपको पुनः जीवित कर दूंगा। और उन्होंने वही दिमाग लगाया, उनको वो मृत संजीवनी सिखानी पड़ी, अभी फंस गए, करता क्या ना करता है ना, तो वो बेचारा मरता क्या ना करता, फंस गया। तो वो उन्होंने सिखाया शुक्राचार्य जी ने उसको पेट के उदर के अंदर ही, और उसको मृत संजीवनी विद्या सिखाई। जब वो प्रकट हुए तो शुक्राचार्य जी का वध हो गया, शुक्राचार्य जी के मृत हो जाने पर फिर कच्छ ने मृत संजीवनी पढ़कर शुक्राचार्य को पुनः जीवित किया और साथ में फिर दंडवत प्रणाम किया, कहा गुरुदेव धन्यवाद, मिशन पॉसिबल, एक होता है मिशन इम्पॉसिबल, मिशन पॉसिबल, मेरा मिशन पॉसिबल हो गया, क्योंकि क्या थी उसकी गुरु के प्रति शरणागति थी। ऐसा नहीं था कि जब पहली बार टुकड़े किया तो आत्मा उड़ती हुई जाए बृहस्पति के पास कि इसीलिए भेजा था, टुकड़े टुकड़े हो गए हम लोग है ना, या फिर हमें एकदम चूरा बना दिया, हमारा चूर्ण बना दिया है हमारा, ऐसा नहीं, रोया नहीं, वो जाकर के लगा रहा बार बार बिचारे ने इतने कष्ट सहे, इतना सरल नहीं, आपने तो इसे हंसी मजाक हास्य से समझ लिया, किसी के शरीर को पाउडर बना दिया जाए, सोचिए कितना कष्ट सहा होगा। लेकिन उस वक्त उसके मन में क्या अभिलाषा थी, सेवा किसकी करनी थी, अपने भाई बंधुओं की, देवताओं की सेवा करनी थी, अपने गुरु के शिष्यों की सेवा करनी थी। तो आज हमें श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि जाओ प्रचार करो, अब उसमें अगर कोई हमारा चूर्ण बना दे तो क्या करना चाहिए, वहां से घर चले जाना चाहिए या फिर प्रचार करते रहना चाहिए? दो तीन ही लोग बोल रहे हैं, कितने लोग बोलते प्रचार करते रहना चाहिए? तभी सही मायने में हम अगर गुरु के शरणागत हैं तभी हम सही मायने में कृष्ण के, और जब कृष्ण के शरणागत हैं तभी माया से बच सकते हैं, वरना लगे रहेंगे सिद्धो हम बलवान सुखी में। इसलिए वैष्णवों के लिए तीन प्रकार के कवच बताए गए, जैसे कच्छ ने मृत संजीवनी सीखा, आप लोगों को मृत संजीवनी सीखना चाहिए। वैष्णव की मृत संजीवनी तीन प्रकार की है। पहला प्रकार है मृत संजीवनी नित्य रूपेण साधु संग, क्या होना चाहिए, नित्य प्रतिदिन साधु संग, ये पहली संजीवनी विद्या है। अगर भक्ति में हमेशा जीवित बने रहना है, कोई चूर्ण भी बना दे पुनः जीवित हो जाए कच्छ की तरह, कोई चॉप कर दे फिर भी पुनः जीवित हो जाए, और अंत में अपना सक्सेसफुल करके आए मिशन, उसके लिए पहली है नित्य रूपेण साधु संग। साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है अगर कोई व्यक्ति रोज नित्य प्रतिदिन क्या करता है, साधुओं का संग करता। तो साधु संग के लिए श्रीमद् भागवत कक्षा से उत्तम और कुछ भी नहीं, या तो घर में साधु श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ें, उनसे साधु संग करें, या फिर श्रवण करके साधु संग करें, और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो आप ऑडियो सुनकर भी साधु संग कर सकते हैं, पर साधु संग करना है। ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन आप भागवत को स्मरण श्रवण अध्ययन ना कर पाए, रोज आपको श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत करना चाहिए सेवा। जैसे कि पिंगला कहती थी ना, आशा ही परमम दुखम और निराशा ही, आशा ही परमम सुखम निराशा ही परमम दुखम, लेकिन असलियत में है आशा ही परमम दुखम। इस संसार में आशा ही परम दुख है, संसार में आशा परम दुख है। जो लोग आशावान रहते हैं ना, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एक बिल्डिंग और बनाऊंगा, एक बेटे का बना दूंगा, एक प्रॉपर्टी बेचकर फिर वहां मकान ले लूंगा, आशा ही परमम दुखम, वो व्यक्ति सदा दुखी रहेगा। चेहरे से तो मुस्कुराएगा पर मन से रोता होगा, वो प्लास्टिक स्माइल। जैसे एयर इंडिया में एयर होस्टेस होती है ना, वो जब आप जाएंगे एयर इंडिया की फ्लाइट में जगन्नाथपुरी जाएंगे जनवरी में भक्त, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, हेलो वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन बेचारी को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है ना, 2 महीने से सैलरी ना मिली हो, वो बेचारी हंस रही, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, हैप्पी डे सर, बेचारी खुद का डे बेकार हो रखा है ना। तो आप सोचो क्या नकली हैप्पी डे बोल रहे हैं। वैसे ही है आशा ही परमम दुखम, हम भी मुंह से तो मुस्कुराएंगे प्लास्टिक, लेकिन अंदर से दुखी रहेंगे। और इस दुख को समाप्त करने के लिए दूसरा कवच जो है वैष्णवों के पास में, दूसरी मृत संजीवनी विद्या है कि व्यक्ति को भगवान के नाम जप को कभी त्यागना नहीं चाहिए। नाम जप को जिस दिन त्याग दिया उसका व्यक्ति का मृत होना निश्चित है। नाम जप का मतलब ऐसे नहीं जप करते जा रहे हैं और बात भी करते जा रहे हैं, नाम जप का मतलब है ध्यान पूर्वक नाम जप। आप देखिए श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध पूर्ण हो जाने पर अंतिम श्लोक सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, ये ऊपर बैठे सुखदेव गोस्वामी है ना, परीक्षित महाराज को सुना रहे, अंतिम श्लोक क्या बोलते हैं, अंतिम भागवत का अंतिम श्लोक जिसको अधिकतर भागवत कथाकार सुनाते ही नहीं है। और इसीलिए भागवत कथा में जाने वाले लोग, टीवी से कथा सुनने वाले लोग ये जानते नहीं है कि इस जीवन का अंतिम ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। तो यहां पर अंतिम श्लोक बताया गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। उस हरि को जो परम है, कौन है परम, हरि, न गणेश जी बताए, न दुर्गा जी बताए, न साई बाबा बताए, कौन बताए, नमामि, उसको प्रणाम करो, हरिम जो हरि है, भगवान का एक अवतार है हरि अवतार, जानते हैं आप लोग हरि अवतार भगवान का, एक नाम तो बोलते हैं लेकिन एक अवतार है भगवान का, 24 अवतारों में से हरि अवतार। बता सकता है कोई कब आए थे भगवान हरि रूप में, हरि हयग्रीव अलग है, हरि हरि जो आप हरि बोलते हो ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि क्या है, ये कब आए ये हरि अवतार है, कब आए हरि अवतार। तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापा प्रणाशनम, सारे पाप को प्रणाश प्रणव खत्म करने की शक्ति किसमें है, नाम संकीर्तनम यस्य, खाली नाम संकीर्तन में, प्रणामो दुख शमनस्तम, ऐसा कोई दुख नहीं बचेगा आपके पास में जीवन में जो कहे आदमी को बड़ा दुखी हूं यार, आई एम इन टेंशन, क्यों, अगर उसको करेगा हरि नाम संकीर्तन, नमामि हरिम परम, जो परम हरि भगवान है उनके नाम का स्मरण करें। आप देखिए नाम अभास करने से भी, खाली नाम अभास, सांकेतिक नाम अभास करने से भी इतने बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं, तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा उसका तो कहना ही क्या। सांकेतिक समझते हैं, संकेत पूर्वक नाम लेना, जैसे किसी का नाम हो हरि प्रसाद तो बोले हरि बोल प्रभु, हरि बोल, हरि बोल प्रभु, हरि हरि बोल प्रभु, हरि प्रसाद हरि, तो हरि बोलने से ही उसको सांकेतिक नाम आभास की क्या होती है, कृपा प्राप्त। इसीलिए इस्कॉन आदि वैष्णव गौड़ीय संप्रदायों में सभी को दीक्षित नाम दिया जाता है। कई संप्रदायों में दीक्षा के बाद नाम परिवर्तन नहीं होता है, परंतु पंचरात्रिक विधि में ये नाम परिवर्तन एक अंग है 5 में से, जो कि दीक्षा समारोह को पूर्ण करता है। क्यों, क्योंकि कर्मी नाम से अलग एक दीक्षित नाम होता है जो कृष्ण का नाम होता है, उससे दोनों के फायदे होते हैं, लेने वाले का भी और जिसका होता है उसका भी। जैसे मान लीजिए मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास, अब कोई भक्त बुलाएगा प्रशांत मुकुंद प्रभु, प्रशांत मुकुंद प्रभु, प्रशांत मुकुंद, प्रशांत मतलब वो भगवान जो सदा से ही शांत बने रहते हैं, और मुकुंद जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना, तो वो बार बार किसका नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो सारे भक्त जो होंगे उन पर भगवान की कृपा हो रही है, सांकेतिक नाम की कृपा, उनका सारा दिन जप चल रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर पा रहे हैं पूरा दिन, लेकिन बोल रहे हैं बलि मुरारी प्रभु, प्रशांत मुकुंद प्रभु, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो भगवान का नाम ले रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं पीछे। और जो भक्त है उससे कोई बोल रहा है आपका नाम, मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास, मेरा नाम प्रशांत मुकुंद दास, दास बोल के बाद बार स्मरण हो रहा है कि मैं उस मुकुंद का कौन हूं, दास। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है सांकेतिक नाम वाश। देखिए एक कथा आती है, इसमें 4 चोर थे, चोरों ने सांकेतिक नाम रखे लूटने के लिए, लोग नाम का गलत उपयोग भी करते हैं, क्या रखे, उन्होंने कहा कि जंगल में रहा करते थे, पुराना जमाना था, सेठ लोग निकलते थे एक जंगल से दूसरे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, बीच में काफी गहरा जंगल पड़ता था, जैसे आपके द्वारका में भी काफी वर्ष पूर्व 20 साल पहले अगर देखें तो क्या था यहाँ पर, जंगल ही था, है ना। कोई है 20 साल पुराना यहाँ पर जो 20 साल पहले आया? क्या जंगल देखा था? लूटमार होती थी?
लूटमार होती थी, रास्ते थे ही नहीं, एक एक छोटा सा रोड था।
तो बताइए, जंगल थे तो इस तरह से
अगर फंस गया तो
बस गया। ऐसे ही वहां पर जंगल था तो सेठ लोग निकला करते थे पैसा लेकर इधर, तो जब निकलते थे तो उन्होंने सांकेतिक नाम बनाए थे, कहा कि जब कोई आदमी आता देखे तो ये चारों चोर ने कहा तो जोर से बोला करो नारायण नारायण, मतलब कोई नर आयन अपना उनको समझ तो आया नहीं क्या मतलब है, बेवकूफ थे, अज्ञानी थे, अविद्या में थे, उन्होंने बस सुने थे और उन्होंने अपना सांकेतिक बना लिया, संकेत होता है ना कोड वर्ड्स, कि जब कोई आए ना दूर से पैसे वाला तो बोलना नारायण नर आयन, नर आ रहा है, नर आ रहा है, नारायण नारायण नारायण, और जब पास आ जाएगा तो दूसरा वाले को था वो पेड़ की डाल पर बैठ करके देखेगा कि उसने पैसे की पेटी, पेटी होती थी ना बेल्ट, पैसे बांधते थे कमर के ऊपर, अभी भी आता है मनी बैग आता है आजकल भक्त यात्राओं में डाल के चलते हैं ब्लैक कलर का इधर, तो पहले पूरा का पूरा ऐसे धोती के अंदर बांधा जाता था, तो देखेगा कितना मोटा सेठ है तो बोलेगा दामोदर, उधर मतलब पेट और दाम मतलब पैसा, एक दाम होता है रस्सी जो हम बोलते हैं, दाम मतलब पैसा, कितना पैसा इसके पेट पे बंधा है दामोदर, उसे समझ में आ जाएगा कि पैसे वाला है तो पकड़ लो इसको। तीसरा वाला बोला कि जब दामोदर की आवाज आ जाएगी तब तेरा काम चालू होगा, है ना, तुझे क्या बोलना है वासुदेव, अब वो वासुदेव को मतलब तो समझे नहीं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, उन्होंने कहा वासु मतलब बांस, बांस का डंडा, वासुदेव मारो इसको डंडे से मारो, है ना, और जब वो मर जाएगा तब चौथा वाला बोला फिर मैं उच्चारण करूंगा हरि हर, हर मतलब होता है शिव और हरि मतलब कृष्ण, है ना, हरि हर मतलब मायापुर में एक क्षेत्र है हरिहर क्षेत्र, वहां पे हर मतलब शिव जी, हरि मतलब कृष्ण, शिव और कृष्ण दोनों का वहां पर एक बहुत सुंदर विग्रह है, आधे शिव है आधे भगवान है, तो इस तरह से हरिहर हरिहर बोलू मतलब इसका सब कुछ हर ले निकाल, है ना, तो सांकेतिक उन्होंने अपना बनाया और इस तरह से खूब लूटमार करते थे। तो एक दिन एक भक्त भी था और सेठ भी था, मैंने जैसे हमारे भी बहुत सारे हैं इस्कॉन में भक्त भी है सेठ भी है, तो वो बेचारा भक्ति भी करता था और सेठ भी था, तो एक शहर से दूसरे घर निकल रहा था और पेटी में सारा पैसा वैसा सोने के सिक्के आदि सब बांधे थे, तो दूर से पहला वाला चिल्लाया चोर नारायण, आप ही बोलिए आ गया नारायण नर आ गया, दूसरा वाला बोला क्या दामोदर दामोदर उधर में बहुत पैसा है दामोदर, तीसरा वाला बोला बांसुदेव मारो इसे, है ना, उसने मार दिया। अब मरते वक्त जो था जब ऐसे भक्त के ऊपर हार प्रहार हुआ तो भगवान सब कुछ सह सकते हैं, है ना, लेकिन एक चीज नहीं सह सकते, क्या, भक्त अपराध नहीं सह सकते, भक्त के साथ अपराध हुआ भगवान को बहुत ही कष्ट हुआ, भगवान ने कहा अब तो इनको मारना ही पड़ेगा। चौथा वाला जोर से चिल्लाया क्या हरिहर हरिहर, सब कुछ हर लो सब कुछ हर लो, उन्होंने सब कुछ निकाल लिए पैसे वैसे, इतने में ही जोर की बिजली कड़की और बिजली गिरी वहां पर उस स्थान पे आके, जब जोर की बिजली गिरती है ना तो वहां पर पेड़ भी ऐसे जल जाते हैं जैसे कि रुई में अग्नि लगाने से दिए की बाती जल जाती है, ऐसे जल जाते हैं सारे पेड़ पौधे जानवर, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कुछ ही पल में व्यक्ति पूर्ण समाप्त हो गया, समाप्त हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे बिजली गिरी जोर से और चारों चोर वहां पर और वो साथ में सेठ को तो उन्होंने मार ही दिया था, क्या हो गए सबके सबके शरीर छूट गए। अब ये तो भजन कर रहा था और वो चारों के चारों सांकेतिक नाम अभास, क्योंकि संकेत के नाम सुनने के बाद उन्होंने नाम अपराध नहीं किया कोई, वैसे तो नाम अपराध बहुत करते थे लेकिन इस समय भगवान का एक नाम उच्चारण करने पर, जैसे अजामिल ने अंत काल में भगवान के नाम स्मरण करने से नारायण बोलने से उसने भगवान को एहसास कर लिया विष्णु दूत आ गए, ऐसे ही इसके लिए भी विष्णु दूत आ गए चारों के लिए, और चारों के चारों को कहां ले गए भगवत धाम वैकुंठ धाम ले गए। तो ये सेठ जो है उनको शरीर को मतलब वो वर्णन करते हैं ऐसा कि इस प्रकार से शास्त्र में कथाएं आती है कि वो चारों के चारों भगवत धाम चले गए सांकेतिक नाम आवास से, भजन नहीं करते थे। आप सोचिए अगर सांकेतिक नाम आवास वाला वैकुंठ धाम जा सकता है तो कोई व्यक्ति अगर ये बोलता हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, अगर कोई बोलता हो तो क्या होगा, उसका कितना लाभ प्राप्त होगा उसको, मतलब इतना लाभ की व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, इतनी लाभ की अनुभूति उस व्यक्ति को हो सकती है। और तीसरा कवच है, तीसरी मित संजीवनी है प्रार्थना। क्या है? हमेशा सदैव भक्त को प्रार्थनाओं में आतुर रहना चाहिए। आदमी पूछता है प्रभु जी हमको ना श्लोक याद नहीं होते गीता के, तो भगवान को प्रार्थना किससे करें? ये गोविंदम आदि पुरुषम ट्यूनिंग तो बड़ी अच्छी लगती है, टाण टण बोलते क्या समझ में नहीं आता है ना, याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपकी प्रार्थनाओं को समझ सकूं। लेकिन प्रभु जी बहुत प्रार्थना करी लेकिन समझ नहीं आ रहा, फिर प्रार्थना करो कि प्रभु मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि आपकी प्रार्थनाओं को समझ सकूं, बोले फिर भी समझ नहीं आ रहा, प्रभु प्रार्थना करो कि मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि उससे ऐसी प्रार्थना बने कि आपकी प्रार्थनाओं को समझ सकूं। मतलब प्रार्थना का गुरुतम तत्व प्रार्थना ही है, प्रार्थना का गुरुतम तत्व प्रार्थना ही है। जितनी प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा हम भगवान को समझ पाएंगे, उनकी शरण में जाएंगे, माया से दूर हो पाएंगे, जितनी ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं। इस एक कथा सुनाकर के विराम करूंगा, इसमें बड़ा मुख्य है इसको समझना, हा? कि सबसे सुंदर प्रार्थना जिस भक्त ने करी है और जिसके लिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा और आपने उत्तर नहीं दिया, हरि अवतार प्रकट हुए हैं, वो प्रार्थना देखिए कैसी है। हाँ, ऐसी प्रार्थना है जिस प्रार्थना को सुनने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक भक्त थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न, उड़ीसा वाले की बात नहीं कर रहे हैं, एक और राजा थे इंद्रद्युम्न। वो राजा इंद्रद्युम्न बड़े तपस्वी राजा थे, अपना सब कुछ त्याग करके जंगलों में जाकर के उन्होंने क्या किया, ऐसे करके विश्राम करके और अपने ध्यान से तपस्या करते थे। तो वहां से अगस्त ऋषि निकल रहे थे, एक दिन अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे, देखा कि बड़े ध्यान मग्न बैठे हैं कोई ऋषि, तो कहा कि अरे हम भी ऋषि ये भी ऋषि, तो हो जाए आज समागम, है ना, मिलेंगे चर्चा करेंगे कुछ, बोधयंतम परस्परम, कुछ चर्चा होगी। परंतु वहां पहुंचे तो ये तो तपस्या में आंख बंद किए बैठे। अगस्त ऋषि ने बहुत बार इशारा किया हरिबोल, लेकिन जब अभी तो बड़ा अपमान लगा, अगस्त ऋषि ने उनको श्राप दिया कि हाथी के जैसा बैठा है, इतने सीनियर डिवोटी आए हैं भक्तों को लेके प्रणाम आदि नहीं कर रहा है, अपने बैठा तपस्या ढोंग करता है, जा हाथी बन जा। तो हाथी बन गए, और हाथी भी कहने कहां बने जाकर के, शीर सागर के हाथी, कहां के, कहां है ये शीर सागर, दूध का तो है, कहां है, मदर डेयरी में, कहां है ये सागर, वैकुंठ धाम में, वैकुंठ धाम के नीचे है करण सागर, करण सागर में बैठे हैं करणोदक्षाय विष्णु, करणोदक्षाय विष्णु के शरीर से निकलते हैं अनेक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में जब स्वेद जल पसीने के जल भरता है उससे निकलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु से निकलते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं कि आप मेरे को बताइए सेवा क्या है प्रभु मेरे लिए। तो जब वो सेवा करने के लिए बैठते तपस्या करते हैं तो उनको दो अक्षर सुनाई देते हैं, त और प, तपस्या। वो जब तपस्या करते हैं तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है कि मुझे क्या करना है, सृष्टि की रचना करनी है। सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनको चतुश्लोकी भागवत में ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे आपको सृष्टि की रचना करनी है। अब सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन गाड़ी तो बना दी इंजीनियर ने, लेकिन ड्राइवर के बिना चलेगी क्या? तो शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं जो शीर सागर में लेटे हैं, वो है शीर सागर। कर्णोदक्षाय सागर में लेटे हैं कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय सागर में लेटे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, शीर सागर में लेटे हैं शिरोदक्षाय विष्णु, तीनों लेटे हुए हैं। शिरोदक्षाय कभी कभी खड़े भी होते हैं कई जगह पर, लेकिन गर्भोदक्षाय और कर्णोदक्षाय तो विश्राम में ही रहते हैं हमेशा। तो देखिए आपने श्रीरंगम में जो मूर्ति है वो कैसी है, लेटी हुई मूर्ति है। श्रीरंगम में भगवान है ना करणोदक्षाय विष्णु के रूप में लेटे हैं, लेकिन वरदराज कृष्ण के रूप में भगवान एक हाथ ऊपर करके एक हाथ नीचे करके इसे खड़े हैं। खड़े स्टैंडिंग, तो वो शिरोदक्षाय विष्णु का रूप है। जैसे परमात्मा रूप में भगवान फिर सबके हृदय में जब आते हैं तब वो गाड़ी चलने लग जाती है और हम बोलने लगते हैं मैं हूं राघव, मैं हूं माधव, अपने नाम बोलने लग जाते हैं। और जैसे ही परमात्मा निकलते हैं, आत्मा निकलती है, वो फिर ना माधव है ना राघव है, वो क्या है, डेड बॉडी है, मृत शरीर है। फिर उसमें आत्मा आती है, परमात्मा आते है, तो फिर वो चलने लग जाता है। तो इस तरह से शिरोदक्षाय विष्णु जो शिव सागर में विराजमान है, इस खड़े हुए भगवान शिरोदक्षाय विष्णु, शिर सागर में एक पहाड़ है जिसका नाम है त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ 10,000 योजन लंबा पहाड़, और उसकी खाइयों में, घाटियों में शिर सागर है, दूध का सागर। एक है लवण सागर, कहां है लवण सागर, यहां पर हमारी पृथ्वी पे। लवण सागर मतलब नमक का सागर, हमारे इसीलिए खारा पानी है, नमक सागर है, इसलिए बोलते हैं उसमें से सॉल्ट निकलता है उसको उबालने से, लवण सागर। और ऊपर है कौन सा, शीर सागर, है ना। तो वहां पर पूरा का पूरा दूध ही दूध है, वहां पर पानी नहीं है, हमारे यहाँ की तरह नहीं दूध में पानी मिलाते हैं, दूध ही दूध है, प्योर। लस्सी बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, बढ़िया दूध एकदम, बहुत हमसे 10 गुना, मतलब 100 टाइम्स बड़ा होगा उसका साइज, हमारे लवण सागर से 100 गुना बड़ा है ना। और वहां पर पहाड़ियां कैसी है, सोने की पहाड़ियां, स्वर्ण पर्वत। हमारी तो पर्वत नहीं है, अगर हमारे यहाँ स्वर्ण पर्वत हो तो क्या होगा, पर्वत बचेगा, लोग कथा छोड़ के जाएंगे, पहले पर्वत कहां है प्रभु जी ये बता दो आप, है ना। स्वर्ण पर्वत कहां है प्रभु जी, खुदाई चालू कर दे आज से ही, है ना। लोग नॉर्मल पर्वत को नहीं छोड़ते, देखो आप स्टोन डस्ट निकाल निकाल के जितनी भी पहाड़ियां थी हमारी सभी पहाड़ियों को रौंद डाला है, है ना। आज के जो पारंपरिक नेता है उन्होंने सब निकाल दिया, क्यों, उसको बेचने से बहुत धन मिलता है, यमुना की सैंड निकालने से बहुत सारा धन मिलता है, सब निकालते जा रहे हैं, है ना, दोहन कर रहे हैं अपनी प्रकृति का। और फिर कहते हैं कि प्रकृति है ना बड़ा ही, देखिए कैसा प्रकोप है प्रकृति का, कि है ना 5 दिन तक धुआं ही धुआं रहा, है ना। प्रकृति का प्रकोप इसलिए क्योंकि प्रकृति का दोहन हो रहा है बुरी तरह से, तो प्रकृति प्रकोप करेगी, अपना रिजल्टेंट दिखाती है। तो इस प्रकार से शीर सागर में दूध ही दूध है। एक जगह मैं प्रवचन दे रहा था तो एक भक्त पूछता है प्रभु जी दूध ही दूध है, मैंने कहा हाँ कितना दूध होगा, मैंने कहा यहां से 100 गुना है, फिर लवण सागर का समुद्र से पानी इतना है, इससे 100 गुना तो कितना दूध होगा, मैंने कहा बहुत। कहा प्रभु जी फिर एक प्रश्न है, मैंने कहा हाँ, क्या दूध कभी फटता नहीं है। मैंने कहा हाँ फटेगा तो बताएंगे, आप जाके पनीर बना लेना। तो पनीर कभी नहीं बनाने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो दिव्य है, दिव्य शीर सागर का दूध है जिसमें कौन रहते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से उस त्रिकुट पहाड़ियों पे कौन घूम रहा था, वो हाथी गज, और साथ में हाथियों का लीडर था इंद्र, गजेंद्र। उसमें एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, सोचिए 10,000 हाथियों का बल। और किसमें रहा है 10,000 हाथियों का बल, भीम में, भीम भी ऐसे ही थे एकदम पावरफुल, ऐसे ही गजेंद्र था। और गजेंद्र जब चलता है तो उसके साथ में अब पावरफुल भी है, इंद्र मतलब लीडर भी है, तो सारी की सारी जो फीमेल है वो किससे आकर्षित होंगी, ऑब्वियसली उसी से होंगी जो बलशाली हो और जिसके पास प्रॉपर्टी हो और जो कि लीडर भी हो, बस यही तो चाहिए, 3 चीजें सब कुछ मिल गई। सब जितनी भी हथनियां थी उस स्थान की, खाइयों की, घाटियों की, सब उसके पीछे पीछे चलती थी, और सभी हथनियों से उसके कई कई बच्चे थे, और सब बच्चे भी किसके साथ रहेंगे, एवरीथिंग इज मनी, है ना, मनी एंड हनी, तो हनी भी चलती थी साथ में और मनी भी थी, और मनी के चक्कर में बच्चे भी पीछे चलते, पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी, पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी, पीछे पीछे चलते थे। और सभी लोग घूम रहे थे, उसने कहा, और वो लीडर था, एक शब्द बोल देता था तो सब लोग फिर उसको काट नहीं सकते थे, क्यों, उसके पास क्या था, शक्ति थी पैसे की, शारीरिक, इसलिए वो जो बोलता था पत्थर की लकीर। और उसने एक दिन कह दिया आज चलेंगे जल क्रीड़ा के लिए, सब लोग, सारे बच्चे खुश, पापा पिकनिक पे जाएंगे, पापा पिकनिक पे जाएंगे, पापा भी गए पिकनिक पे, माताओं ने भी अपना ड्रेस व्रेस पहन लिया पिकनिक वाला पूरा एकदम, है ना, खाना वाना बनाया हुआ, लंच वंच लेके चल दिए, सारे पहुंचे जल क्रीड़ा करने के लिए। वहां एक सरोवर था, उस सरोवर में प्रवेश किए गजेंद्र ने, क्या किया, प्रवेश करके अब जाकर के सरोवर आदि में जल होता है, सम्मानित जल है, गंगा का जल है, कहीं पर यमुना का जल है, कहीं पर खाली जल है जिसके देवता वरुण देव है, वो जल के प्रति अपराध होता है अगर आप वहां पर बहुत जल क्रीड़ा करते हैं। वो पहुंच गया हाथी, जल क्रीड़ा करने लगा, सूंड में पानी भरता था, और फिर पत्नियों पर अपनी, विभिन्न विभिन्न हथनियों पर अपनी क्या करता था, स्प्रे करता था, है ना, ऐसे, और सब बड़े बड़े उससे इतराती थी, मेरे पे डाल दिया, मुझ पे डाल दिया, इतना इतरा रही थी, और सभी बच्चे खुश होते थे मेरी वाली मम्मी पे, मेरी वाली मम्मी पे, है ना। और सभी ऐसा ऐसा क्रीड़ा हो रही थी, जल क्रीड़ा, बहुत ही आनंद। अब ऐसे आनंद के समय में कोई सोच सकता है कि एकदम मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्यु आ रही है, हर मृत्यु रूप में हर श्यामी हम सर्व, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हरण कर लूंगा। मृत्यु वहीं पर वेट कर रही थी, है ना, सारे मजे ले रहे हैं। इसी वाटर पार्क में देखते हैं ना, भक्त भी चले जाते हैं, ये ऊपर से स्लाइड छिपा, खुश होता है, हरी बोल, हरी बोल भी बोलता है और पानी में भी जाता है। उसको पता नहीं है वाटर पार्क को क्या बोलते, पता है उसको, वाटर पार्क नाम नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए मूत्र पार्क, है ना, क्योंकि जहां पर जितने भी लोग जाते हैं ना, वो सब टॉयलेट आदि करते हैं उसके अंदर, और फिर ऊपर वाला आता है, इधर से ये वाला करके निकला है, बाहर पीछे से आया, ज़ूम, उसके मुंह में गया अंदर पानी, है ना। सबका पता नहीं कैसा संबंध है, वो बेचारा विसर्जन करता है, ये उसको प्रयोजन करता है। ऐसे वाटर पार्क गंदा एकदम इन्फेक्टेड होता है, इसीलिए बाद में निकल के बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, ऐसा लगाओ, स्किन डिसीज हो गए। और पानी बदलते भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे हो तो बदल देते हैं, लेकिन अभी रिसेंट वाले का क्या करें, कितना पानी बदलेगा आदमी, ये तो ऊपर से हर 3 सेकंड में आदमी गिर रहा है नीचे आके पानी में। तो इसे वाटर पार्क में लोग जाते हैं, वो भी गया इसे वाटर पार्क में, खेल रहा था और मृत्यु वहां पर इंतजार कर रही थी, और तुरंत ही एक ग्रह ने, मगरमच्छ ने क्या किया, उनका पांव पकड़ लिया। अब ये ग्रह कौन था, एक गंधर्व थे जिनका नाम था हु, क्या नाम था, ये दो भाई थे, एक का नाम था हा हा, एक का नाम था हु, और वहीं से आया है हु, ये वहीं से बोलते ना, बड़ा हु हो रहा है। ये गंधर्वों का कार्य था कि जाकर विभिन्न विभिन्न दिशाओं में लोगों जो दुखी होते हैं उनको हंसाना, अपनी क्रीड़ाओं से, अपने भाष्य से, अपनी कलाओं से लोगों को हास्य प्रदान करने की जो कला थी, ये हु और हाहा के पास थी। तो एक दिन देवल ऋषि क्या कर रहे थे, गंगा जल में ऐसे भगवान को अर्पण कर रहे थे गंगा जल का, हुहु ने जाकर चुपके से उनका पांव पकड़ लिया, और देवल ऋषि घबरा गए, ग्रह है, ग्रह है, तो हा हा हंसने लगा, हुहु हा हा, हुहु हा हा होने लगी, तो उनको बहुत गुस्सा आया, हा हा तो भाग गया वहां से, लेकिन जो हुहु था वो पकड़ में आ गया। देवल ऋषि ने उसको पकड़ लिया और कहा, तूने बहुत मजाक उड़ाया मेरा, अब मैं तुझे श्राप देता हूं, बहुत मजा आता ग्रह बनने में, मगरमच्छ बनने में, इट्स टू मच, यू बिकम नाउ मगरमच्छ, है ना, और उसको फिर मगरमच्छ बनने का श्राप दिया। तो वो ग्रह था, अब वो रोने लगा, कहा, अरे हम तो गंधर्व लोक से आए हैं, आपको हास्य प्रदान कर रहे थे, जीवन में लगा आप दुखी हैं। कहा, मैं दुखी नहीं था, मैं ध्यान में था। कहा, जो भी था, लेकिन हमने आपको हंसाने के प्रयोजन से किया। कहा, लेकिन अब तो श्राप चालू हो गया, निकल गया तीर, अब क्या कर सकते हैं। कहा, ठीक है, अब जो है भगवान आप पर कृपा करेंगे, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अब आप बैठो और इंतजार करो भगवान कब आएंगे आपसे, आपको मोक्ष देने के लिए। अब ये ग्रह बैठा बैठा इंतजार कर रहा था, और यहां पर गजेंद्र ने जैसे ही अपनी हथनियों के साथ में क्रीड़ा करते करते, अब क्या है, वो इग्नोरेंट हो जाता है आदमी, थोड़ा 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 और जल में, थोड़ा और जल में, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा सेंटर, थोड़ा साइड में, थोड़ा और बीच में, और बीच गहरे जल में चला गया। जब जाता गया तो पीछे से क्या हुआ, ग्रह ने जब पांव पकड़ा तो जोर से चिंगाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। तो पत्नियां बोली, इतना शक्तिशाली है, 10,000 हाथियों का बल है, बचाओ बचाओ क्यों कर रहा है। तो ना, क्योंकि जल में ग्रह जो होता है मगरमच्छ, उसकी शक्ति 10,000 गुना होती है उस व्यक्ति से जो कि थल का जीव है, लेकिन यह ऐसा था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। अब दोनों समान पावर के थे, लेकिन क्या हो रहा था, इधर जो ये हाथी था इसका बल नष्ट हो रहा था, अभी चोट लगेगी, वो बार बार इसे दबड़े में फंसाता था, इसका बल नष्ट हो जाता, खाया पिया कुछ भी नहीं, बार बार केले खाने को चाहिए, 10 टन खाना खाता है एक हाथी, वो खाने को नहीं मिल रहा है, और इधर ये ग्रह को तो पानी मिल रहा है, जीव जंतु मिल रहे हैं, नीचे से साइड से खाता भी जा रहा है, बल मिलता जा रहा है, और ये जो हाथी है ये बलहीन होता जा रहा है, लेकिन शक्ति बराबर थी, तो अब शक्ति इसकी रिड्यूस होनी शुरू हो गई। हथनियां बोली, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी डियर, वी आर हेयर, आप चिंता मत करिए, हम हैं, आपको निकाल लेंगे। उसने अपनी पूंछ ऐसे सीधी कर दी और सभी हथनियों ने सूंड बनाकर ऐसे चेन बना ली, बच्चे भी माताओं के पीछे लग गए और सबने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया, है ना, इसे खींच रहे थे जोर लगा के, भैया गजेंद्र को बचा लो भैया, जोर लगा रहे थे पूरा। लेकिन 1,000 वर्ष तक युद्ध चला, दिव्य, 1,000 वर्षों तक। अभी एक घंटे का हो, दो घंटे का हो, चार घंटे का हो, आपने देखा होगा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जा रहे हो तो ट्रैफिक जाम होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, लौट के आओ तो उसमें खाली हो जाता है, ज्यादा देर तक लोग टिकते नहीं है। जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाकी चालान कट जाता है, डिस्पैच मतलब डिस्पर्स हो जाता है सारा, बहुत देर तक उसी स्थान पर अधिक लोग रहते नहीं है। ऐसे ही वहां पर बच्चे बोलने लगे, अब कितने दिन पिताजी और युद्ध चलेगा, हम तो थक गए, इससे बेहतर हम किसी और पिता को ढूंढ लें, पिता को ही नया ढूंढ लेंगे तो चलेगा छोड़ के। अभी बल और हल्का हो गया, पत्नियां बोली अब बहुत वर्ष हो गए, अब हम भी आपको नहीं साथ दे पाएंगे, अब हम चलते हैं। इसे ही मैं हूं मेरा है हम व्यक्ति कहते रहते हैं, जब अंतिम संस्कार होता है तो कौन बता सकता है मृत्यु के बाद में किसका पुत्र और किसकी पत्नी उसके साथ जाती है, बता सकता है कोई? हमारा पुत्र हमारी पत्नी हमारे साथ जाएगी मरने के बाद, प्रभु जी हमने LIC बनवाया है ना, लेकिन LIC क्या कहती है, मृत्यु के साथ भी और मृत्यु के, झूठ है ये, मृत्यु के बाद कौन आता है, कोई साथ नहीं देता, निकल जाता है शरीर भी, परिवार वाले जो पिता कह रहे थे, जो पति कह रहे थे, जो भाई कह रहे थे, वही कंधे पे लगे जा करके शमशान में उसको दाह कर देते, जला देते, कौन साथ देता है? लेकिन फिर भी मैं हूं मेरा परिवार है। अजी आप प्रोग्राम में नहीं आए, ओ परिवार की शादी थी ना, उनका इनविटेशन था तो वहां शगन देने जाना था, वी आर वेरी बिजी, है ना, मैं हूं और मेरा अहम ममेती, इतना फंसे संसार में, लेकिन वही संसार आपको एक दिन जलाएगा और जो बचाएगा उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये गजेंद्र भी इसी अहंकार में था, अहंकार से पीड़ित था, सबने एक एक करके उसे छोड़ना प्रारंभ कर दिया, सब छोड़कर निकल गए, पत्नियां भी छोड़ गई, अभी बेचारा गजेंद्र अकेला और गहरे पानी में जाता जा रहा था, बलहीन होता जा रहा था। अब इसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई, कौन था, इंद्रद्युम्न राजा, अगस्त ऋषि के द्वारा श्राप मिला था, अब स्मरण करने लगा, मैंने इतनी प्रार्थना याद की थी, हरनिश मैंने भजन किया, हरनिश मतलब सतत कीर्तन किया है मैंने भगवान का, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, और बहुत सुंदर गजेंद्र ने स्तुतियां गाई हैं, गाना प्रारंभ कर दिया स्तुतियां, उसको सारी स्तुतियां स्मरण होने लगी। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में जब तक शरीर में बल है तब तक अगर भगवान के नाम का जप किया हो और मृत्यु आ जाए तब भगवान का नाम निकलता है, जिसने जप नहीं किया और मृत्यु आ जाए अंत में नहीं होता, राम बोलो राम, पिताजी पिताजी राम बोलो राम, हे राम, पिताजी पिताजी राम बोलो, पिताजी कृष्ण बोलो कृष्ण, अरे हमारी माता जी ना भक्ति नहीं करती थी, इतना अमेजिंग हुआ ना, एंड टाइम पे मैंने कहा कृष्ण, मम्मी बोली कृष्ण, और भगवधाम चली गई, ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि भगवान ने कहा अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, भगवान ने नहीं कहा अंत काले चमामेव बुलवा मुक्तवा कलेवरम, आप बुलवा तो दोगे लेकिन क्या स्मरण में आया, हे मां हे मां हे मां, मां का नाम लो, बंगला लोग बोलते हे मां बोलो, हे मां हे मां, लेकिन वो हेमा मालिनी को सोच रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, वो कौन सी मां को यह स्मरण कर रहा है, स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसका स्मरण कर रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम, भगवान ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अंत में भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है, क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ पित्त वात पकड़ लेता है, बोला नहीं जाता है। जैसे एक परिवार था, उनके घर पे मृत्यु हुई उनके पिताजी की, तो सारे भक्त उनके घर पहुंचे, उनके पिताजी भोले बाबा के भक्त थे तो हमेशा बोलते रहते थे भोला भोला भोला, एंड में बेड रिटर्न हो गए थे, मतलब सैया पे लेटे थे फिर भी बोलते रहते थे भोला 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 भोला, तो पूछते थे प्रभु जी हमारे पिताजी कहाँ जाएंगे, तो भक्त बोलते थे आपके पिताजी ना कैलाश जाएंगे, कैलाश, अच्छा कैलाश, ठीक है ठीक है, उसे पता नहीं कैलाश भी इसी भौतिक संसार में है, फिर मृत्यु संसार में फंस गया, लेकिन फिर भी वो चलो कैलाश जा रहे हैं, भगवान के नंदीगण बन जाएंगे, हर वक्त भोला भोला बोलता था। एंड में बच्चे ने कभी ध्यान नहीं दिया, अंत समय आया, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे पिताजी थे, तो पूछ रहे बच्चे पिताजी आपकी कोई अंतिम इच्छा, और पापा का गला तो कहा कंठ अवरुद्ध था, कफ पित्त वात ने पकड़ा था, पिताजी बोल रहे कोला कोला कोला, तो पिताजी शरीर छोड़ दिया। अब भक्तों ने पिताजी गुजर गए तो अंतिम संस्कार किया, कथा ऑर्गेनाइज करी, कीर्तन प्रसाद रखा, तो प्रसाद में सबसे पहले भक्तों को, कीर्तन के बाद में कोका कोला सब भक्तों को दे रहे थे, पिताजी के फोटो क्या के दिया जल रहा था, मैंने कहा कि प्रभु जी दिया जल रहा है, पिताजी का ये कोई शादी पार्टी नहीं है, ये 13वीं का खाना है, इसमें कोका कोला नहीं बटता है, कहा नहीं पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मैंने कहा पिताजी की अंतिम इच्छा कैसे? कहा अंत में जब पिताजी प्राण त्याग रहे थे, हमने पूछा पिताजी कोई अंतिम इच्छा? पिताजी बोले कोला कोला कोला। लेकिन पिताजी क्या बोल रहे थे? भोला। तो ये बहुत सुनने वाली बात है कि स्मरण होगा कि नहीं होगा, कि बोलता आदमी क्या है कुछ उसे भी नहीं पता होता, उसकी स्मरण शक्ति लॉस हो जाती है। लेकिन कृष्ण इस बात का वादा करते हैं कि अगर आपने पूरा जीवन मेरे नाम का भजन किया तो अंत में आपको स्मरण होना हो, लेकिन मैं आपके हृदय में शिरोदक्षाय रूप में बैठा हुआ आपके मस्तिष्क में अपना स्मरण कराऊंगा। तो भगवान के लिए बड़ा मुख्य है। तो गजेंद्र के साथ वही हुआ, उसने अहर्निश स्तुति करी थी भगवान की अपने पूर्व काल में, उसको सारी स्तुतियां स्मरण होने लगी और अब स्तुति करता जा रहा है और उसने अंतिम स्तुति करी, एवं व्यवस्थितो बुद्धाया समाधया मनोहृदि जजापा परम जाप्यम प्राक जन्मनि अनुशिक्षितम। एवं व्यवस्थितो बुद्धया, उसने अपनी बुद्धि को स्थिर किया। अब जब लग रहा था कि प्राण अब तो मतलब गए मेरे, मैं मरने वाला हूं, अब क्या कर सकता हूं, लास्ट ऑप्शन क्या है? हरि, बस भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, है ना। उसको अंत में जैसे द्रौपदी ने जब दुशासन ने चीरहरण प्रारंभ किया तो उसको पहले तो क्या लगा कि मेरे पति बचा लेंगे, वहां पर पांचों बैठे हैं पांडव, तो पांचों का हाथ गिड़गिड़ाई कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, लेकिन पांचों ऐसी गर्दन कर लिए हम नहीं कुछ कर सकते। तो फिर बोली अरे पांडव नहीं कर रहे, तो भीष्म पितामह आप तो पितामह है। पितामह ने भी कहा जिनका नमक खाया है उनसे मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूं, मैं पांडव का नहीं नमक खाता हूं, कौरवों का नमक खाता हूं। दुर्योधन और आदि के जो पितामह पिता थे धृतराष्ट्र के पास गए कि आप राज सिंहासन पर बैठे हैं, आप न्याय को देखिए, अन्याय हो रहा है। उन्होंने भी बोले मैं तो अंधा हूं मुझे दिखता नहीं। अरे समझ तो आ रहा था लेकिन उन्होंने कहा मैं अंधा हूं मुझे दिखता नहीं है। वो नेत्रहीन नहीं थे, वो ज्ञानहीन थे, वो शास्त्रहीन थे, है ना। उनके मन में कलमश भरा था अपने पुत्रों के लिए, मामकः पांडवः, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने पहले ही अलग कर दिया है उस प्रसंग में। मामकः पांडवश्चैव किम् अकुर्वतः संजय, क्या किया मेरे और पांडवों के पुत्र, मतलब मेरे अलग है पांडव अलग है। ऐसे धृतराष्ट्र ने भी मदद नहीं करी, ऐसे समय द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, जब कोई नहीं है तो कौन है? अरे कृष्ण कहाँ है, मैं हूं। आज का टॉपिक है ये, मैं हूं। जब कोई नहीं है तो कौन है? पुलिस वाला ना सुने आपकी, आप लेके जाए रपट लिखाने FIR, वो ना सुने, ट्रैफिक पुलिस ना सुने, पड़ोसी ना सुने, रिश्तेदार ना सुने, तो आदमी क्या कहता है अब बहुत हो गया, आप ना आओ ना, मुझे मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, आई विल डू, मैं करूंगा। लेकिन वो भूल जाता है कारणम कौन है, सर्व कारण कारणम, हमारे इस अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण, इस पांचवें अध्याय का नाम है। वो भूल जाता है समस्त कारणों का कारण तो कृष्ण है, लग जाता है मैं करूंगा आई विल डू इट, और वो अपना खुद ही वहां पर लड़ाई करने लग जाता है। तो बहुत जरूरी है समझना कि शरणागति करनी चाहिए। तो उसने अपनी बुद्धि को स्थिर किया, समाधस्य मनोहृदि, मन और हृदय से समाधि में चला गया, और क्या किया, जजाप परम जाप्यम, उसने वो जाप किया जो जाप उसने पूर्व काल में किया। सोचिए आप, एक योनि परिवर्तित हो गई है लेकिन जाप जितना कर लिया उतना एज इट इज है, न यह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य उत्तराय तो महते भयात्। महान भय से तार देगा अगर थोड़ा सा भी भगवान का जप कर लिया। सोचो उसने अहिर्नस जप किया था, दूसरी योनि में उसको स्मरण हो गया। देखिए आप, दूसरी योनि में उसको स्मरण हुआ भगवान का, इतना स्मरण किया पूर्व जन्म में, प्राक जन्मनी पिछले जन्म में जो किया था, अनुशिक्षितम अभ्यास किया, जिस जजापम जिस जाप को किया था उसने वही जाप पुनः आरंभ किया और क्या बोलने लगा, हरि हरि हरि। हम भी बोलते हैं ना जब देर हो रही होती, क्या बोलते हैं, हरि जल्दी करो, हरि अप हरि अप, हम भी हरि हरि बोलते हैं लेकिन हम सांकेतिक बोलते हैं। उसने सही मायने में हरि का स्मरण किया, हरि। जब हरि को बोला, रुक्मणी द्वारकाधीश प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, भक्त ने भोग लगाया था, ऑल्टर बंद किया था और रुक्मणी द्वारकाधीश प्रसाद पा रहे थे, तो प्रसाद पाते पाते द्वारकाधीश ने ऐसे रोटी कर दी, क्योंकि रुक्मणी खुद अपने हाथ से खिलाती है भगवान को, द्वारकाधीश को, तो भगवान द्वारकाधीश ने ऐसे हाथ कर दिया, कहा द्वारका में अब मैं प्रसाद नहीं लूंगा, मुझे जाना है भक्त की रक्षा करने। कहा प्रभु 1000 वर्ष से लड़ाई चल रही थी, तब तो गए नहीं, अब अचानक से क्या ऐसी स्पीड आ गई कि आप भागने लगे? तो भगवान बोले कि देखो बस एक ही प्रॉब्लम है, जब द्रौपदी ने उस युद्ध में सोचा कि मैं हूं शस्त्राणी, क्षत्रियों की पत्नी, मैं अपने हाथ से अपने इज्जत को रोक लूंगी, तो अपना बल लगाती रही। मैं गेट के बाहर खड़ा था, बाहर ही खड़ा था, जुए के मैच में मुझे जब गैम्बलिंग हो रही थी उस खेल के अंदर, मुझको युधिष्ठिर ने बताया भी नहीं कि खेल हो रहा है। उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, दुर्योधन ने भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया, दुर्योधन के पास विवेक था, उसने शकुनी को लगाया। अगर युधिष्ठिर के पास विवेक होता तो वो ये कहते उधर से शकुनी खेल रहे हैं, हमारी साइड से कृष्ण खेलेंगे, तो क्या हार सकते थे? कभी महाभारत होता? लेकिन उन्होंने अपना विवेक खो दिया था, विवेकहीन थे, उनके पास विवेक नहीं था, हमारे पास है। तो विवेक नहीं था। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी की मदद क्यों नहीं करी आपने प्रभु? पहली बार में जब दुशासन ने खींचा, पहुंच जाते सुदर्शन चक्र लेकर, प्रभु बोले कि देखो जैसी प्रार्थना होती है ना उसी के अनुरूप कृपा होती है, जितनी प्रार्थना उतनी कृपा। ये यथा माम प्रपद्धन्ते ताम स्ततेव भजामि अहम्, मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, इस संसार में जितनी प्रतिशत प्रार्थना उतनी प्रतिशत कृपा, जितनी प्रार्थना। तो अभी प्रार्थना नहीं करी द्रौपदी ने, इसलिए मैं गया नहीं, मैं गेट के बाहर करना। युधिष्ठिर ने बुलाया न द्रौपदी ने, द्रौपदी भी लड़ती रही। और जब ऐसा लगा ना कि बस अब तो बेइज्जती होने वाली, तो अपनी आंखें बंद कर ली, बोली अब होती है तो होती रहे, जिसका शरीर उसी को समर्पित कर देती हूं। और जोर से क्या चिल्लाई, वासुदेव 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 को पुकारा। अब भगवान कहां खड़े थे? बाहर तो खड़े थे, कान लगा के सुन रहे थे, बुलाए तो एक बार, बुला नहीं रहे ना युधिष्ठिर, बुला सब कुछ हारो फो क्या कर रहे हो, बुलाओ एक बार मुझे, लेकिन बुला नहीं रहे, बुला नहीं रहे भगवान को। जैसे ही भगवान को पुकारा क्या हुआ, भगवान ने फैक्ट्री खोल दी कपड़े की, ये ले। दुशासन कहता है सारी विच नारी है कि नारी ही की सारी है कि नारी नारी विच सारी है, समझ ही नहीं आ रहा है। एक काव्य में लिखा गया है, साड़ी की नारी है कि नारी की सारी है कि साड़ी में नारी है कि नारी की ही सारी है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये नारी साड़ी की बनी हुई है या साड़ी किससे नारी बनी हुई है, ऐसा समझ। इतनी साड़ी निकल रही थी और भगवान पूरी फैक्ट्री खोल दी कपड़े की, है ना। क्यों? सिर्फ एक काम किया, पुकारा भगवान। लेकिन हम पुकारते नहीं है इसलिए भगवान आते नहीं। गजेंद्र बोला अभी ऐसी स्थिति है, मुझे भी क्या करना है, पुकारना है। इसने भी क्या किया, प्राक जन्म अनुक्षितम, जैसा सोचा था वैसा ही इसने भी पुकारा और क्या बोला, हरि। और हरि बोलते ही क्या हुआ, हरि वहां पर द्वारकाधीश रोटी हटाकर के प्रकट हुए। किस पर बैठ करके? गरुण पर बैठ करके आ गए भगवान। और जब भगवान आए शंख चक्र पद्म गदा लेकर के, और इसने क्या किया, स अंबुजम करम गृह महाए, अपने सूंड से स अंबुजम करम, जैसे हम हाथ से अंबुज पकड़ते हैं कमल, इसने वहां पड़े एक कमल को उठा करके भगवान के चरणों में समर्पित किया। थैंक यू गॉड, आप आ गए, धन्यवाद आपका, हे हरि आपने सुन ली मेरी प्रार्थना। वहां आ गए भगवान, एक पल में वहां प्रकट हो गए। लेकिन हमारे लिए भगवान आते क्यों नहीं? जैसे एक बार रुक्मणी द्वारकाधीश प्रसाद ले रहे थे, और प्रसाद लेते लेते क्या हुआ, एक भक्त के पीछे कुत्ता पड़ गया और वो इस्कॉन चौक से भागता हुआ मंदिर की तरफ आ रहा था, और द्वारकाधीश रुक्मणी प्रसाद पा रहे थे दोनों, तो इतनी देर में कुत्ता पीछे बोल रहा था वो, 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 वो भाग रहा था, और भक्त भी आगे भाग रहा था, है ना, हरी बोल, वो भाग रहा था भाग रहा था भाग रहा था। और भगवान ने कहा रुक्मणी हटो ना, प्रसाद लेके बैठ जाती हो जब भक्त परेशानी में, हटो, उसे भक्त को बचाना है, मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है। भगवान निकलने लगे तो उधर से क्या हुआ, भगवान फिर वापिस आए एक मिनट बाद, बोले अच्छा रुक्मणी खिलाओ प्रसाद। कहा प्रभु भक्त की रक्षा हो गई? कहा नहीं नहीं, भक्त ने अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए हाथ में पत्थर उठा लिया है। भगवान ने क्या कहा, भक्त ने अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए हाथ में पत्थर उठा लिया, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, भी मेरी जरूरत क्या है, है ना। तो उसने अपनी, भगवान इसी प्रकार से जब तक गजेंद्र लड़ता रहा, जब तक प्रार्थना नहीं करी भगवान नहीं आए, इसलिए प्रार्थनाओं में बहुत बल है। भगवान आए और आकर के भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पहले किसको काटा, मगरमच्छ को काटा, मगरमच्छ के गर्दन को चक्र से अलग कर दिया, मोक्ष प्राप्त किया, चतुर्भुज रूप लेकर के वापिस, नहीं सॉरी, ये हूहू गंधर्व वापिस अपने लोक को चला गया, प्रार्थना करता हुआ भगवान की स्तुतियां करता हुआ। और दूसरा फिर भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया, जिस कथा को सुनने मात्र से, जो आज आपने सुनी, इसको सुनने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। गजेंद्र मोक्ष का इतना गुणगान गाया जाता है, हाथी को मोक्ष प्राप्त प्रदान किया भगवान ने, और अपने ही गरुड़ वाहन पे चतुर्भुज रूप में उसको सारूप्य मुक्ति, कौन सी मुक्ति, सारूप्य मतलब मेरे जैसा रूप, सारूप्य मुक्ति प्राप्त प्रदान कर अपने गरुण पे पीछे, जैसे आप स्कूटी पे जाओ किसी घर बोले प्रभु जी पीछे बैठ जाओ, ऐसे ही मुक्ति प्राप्त करके उसको पीछे बैठाकर अपने वैकुंठ धाम को हरि ले जा रहे हैं। तो ये अवतार हरि अवतार है भगवान का, गजेंद्र मोक्ष में जो भगवान प्रकट होते हैं। तो एक बात पूछी विष्णु दूतों ने भगवान से कि प्रभु एक बात बताइए, समझ नहीं आई कि आपने मगरमच्छ को क्यों, उस कमबख्त मगरमच्छ की वजह से तो ये बेचारा हाथी 1000 साल तक तड़पता रहा आपका भक्त होकर भी, और वो भी बेचारे का क्या अपराध था, उसने अगस्त ऋषि से अनजाने में अपराध किया था, आपने इस मगरमच्छ को क्यों वापस हु गंधर्व को वापस भेज दिया। कहा क्योंकि ये इसका शिक्षा गुरु था। शिक्षा गुरु कैसे? कहा क्योंकि अगर ये मगरमच्छ ना होता, ये ग्रहा नहीं होता, आज इसके पांव नहीं पकड़े जाते, और पांव नहीं पकड़े जाते तो ये क्या कभी मेरा पुनः स्मरण करता। जाजाप्यम प्रकाश जन्मनी, पिछले जन्म में इसने जाप किया था लेकिन इस जन्म में तो कोई जाप नहीं किया, लेकिन इसके शिक्षा गुरु ने इसको याद दिलाया कि तू कौन है, तू भगवान का अंश है, भगवान का अंश बढ़ा, अपना वंश मत बढ़ा, है ना। तो उसके शिक्षा गुरु ने उसको याद दिलाया, और याद दिलाते ही इसने स्मरण किया, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि जिसने मेरा इतना जाप किया, हुहु गंधर्व ने कभी जाप भी नहीं किया, ग्रह के रूप में भी कभी जाप नहीं किया, लेकिन जो व्यक्ति प्रचार करता है उस व्यक्ति को पहले कृपा मिल जाती है उससे जो प्रचार होकर के भक्त बनता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके जीवन में जिन्होंने कहा होगा चलो चलो इस्कॉन मंदिर चलते बड़ा अच्छा है, आप तो भक्त बन गए और उसने आना छोड़ दिया, लेकिन उसको भी कृपा प्राप्त होगी क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं पहले उसको कृपा देता हूं जो आपका पथ प्रदर्शक गुरु है, जो आपका शिक्षा गुरु, जिसके कारण आपका अहर्निश भजन बनता है, सतत कीर्तन बनता है, वो आपका शिक्षा गुरु है, उसको तो पहले ही मोक्ष प्राप्त हो चुका, उसको तो पहले ही मुक्ति प्रदान कर दी है। अब तो जितने भी भक्ति चल रही है ना, ये प्रेम प्रदान करने की लीला चल रही है, मोक्ष तो सबको प्राप्त हो चुका है। तो ये भगवान ने वहां पर गरुण को वर्णन किया, तो इस तरह से विष्णु दूतों को बताया। तो आज हमने सीखा कि ये मैं हूं, ये मेरा है, इससे छूटने का एक ही रास्ता है कि हम भगवान की शक्ति, भगवान की शरण में जाएं, क्योंकि माया भगवान की पीठ में रहती है, भगवान की पीठ के पीछे जीव रहता है। जीव को अगर माया रूपी आवरणात्मक शक्ति से बचना है तो क्या करना है, कृष्ण की शरण में जाना है। कृष्ण की शरण में जाने का तरीका क्या है, गुरु पद आश्रय, गुरु के आश्रय में जाना है, और तीन उसको मृत संजीवनी विद्याएं अपने जीवन में अपनानी है। पहली क्या है, नित्य रूपेण साधु संग। दूसरा क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षणम शमनस्तम नमामि हरिम परम। उसी का भजन करना है जो हरि है, भगवान कृष्ण का भजन करना है। क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और तीसरा क्या है, प्रार्थना, सदा प्रार्थना करनी है। श्रील प्रभुपाद जब लंदन में थे, राधा लंदनेश्वर मंदिर से जब निकल रहे थे तो प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि और रो रहे थे कि अब मैं पुनः आपको देखने नहीं आ पाऊंगा, आंखों में जल था प्रभुपाद जी के। तो भक्तों ने देखा और कहा कि प्रभुपाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं, चलो सुनते हैं। जैसे आचार्य जन आते हैं, कल भी महाराज आए थे, बहुत सारे भक्त उनके पीछे पीछे चलते हैं देखने के लिए क्या एक्शन करेंगे, आचरण से सिखाते हैं अपने कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो सब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कृपा चाहते हैं। तो सब प्रभुपा जी के पास से प्रभुपा जी प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो कि मैं कभी माया में ना गिरूं, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो मैं कभी माया में ना गिरूं। तो प्रभुपा जी की प्रार्थना सुनकर सबको अचंभा हुआ, कहा प्रभुपाद दुनिया को माया से मुक्त कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं प्रभु मैं माया में ना गिरूं, क्या प्रभुपाद माया में है? तो प्रभुपाद जी से बाद में भक्त ने बड़ा घबराते हुए पूछा, अपने गुरु से ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। कहा प्रभुपाद एक प्रश्न है लेकिन आप बुरा ना माने। प्रभुपाद बोले नो यू कैन। तो प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आपने कहा कि प्रभु मैं कभी माया में ना गिरूं, ऐसा क्यों कहा? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मैं नित्य प्रार्थना करता हूं मैं माया में ना गिरूं, इसलिए निश्चिंत रहो मैं कभी माया में नहीं गिरूंगा, है ना, और ना कभी मैं गिरा हूं ना कभी मैं गिरूंगा। ये भक्तों की प्रार्थना है। आप सोचें कि अरे अब तो मैं भक्त बन गया, अभी तो मैं एकदम मेरे को तो प्रोटेक्शन शील्ड मिल गया है। प्रार्थना बंद काम बंद। जब तक भगवान के धाम न चले जाएं तब तक क्या करना है, और भगवान के धाम जाने के बाद प्रार्थना वहां जाके भी बंद नहीं होता है, जाएगा ही वो जो नित्य प्रार्थना करता रहता है, नित्य जप करता रहता है, नित्य सेवा करता है, साधु संग करता है। वो जाएगा ही नहीं जो क्वालिफाई नहीं करता है। सरकारी नौकरी में होता है ना क्वालिफिकेशन, बीए पास को ही मिलेगी, 70% से ऊपर हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट पास किया होना चाहिए। अगर वो पास ही नहीं किया तो कैसे एंट्री मिलेगी? तो वैकुंठ धाम या गोलोक धाम में नियम है, ये प्रश्नावली सॉल्व करो, साधु संग, नित्य जाप, भक्तों के प्रति विनम्रता, निरअपराध होकर के नित्य ध्यान पूर्वक जप, अंत काल तक भगवान का स्मरण, अहंकार रहित होकर के, अहम ममेति की भावना से रहित होकर, ये सारे गुण जो अर्जित कर लेगा, क्वालिफाई हो जाएगा तो भगवान ले जाएंगे। अब जब ये सारे क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसकी अभिलाषा ही समाप्त हो जाती है, है ना। ना धनम ना जनम सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवतात् भक्तिर अहेतु की द्वै। अब ना मुझे नरक में रखो, स्वर्ग का मन ही नहीं है, जो पहले मन था वो समाप्त हो गया। तो इन गुणों को अर्जित करें और अहम ममेति की भावना से रहित रहे। हरे कृष्णा।